सो वेलकम टू अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट। ये है पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 12 और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो प्रोफेसर मंडल को आप जानते ही होंगे, परंतु एक इंट्रोडक्शन की औपचारिकता मैं पूरी कर देता हूं। प्रोफेसर दिलीप मंडल इज अ फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर ऑफ इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन। ही हैज रिटन लॉट ऑफ बुक्स ऑन मीडिया एंड सोशियोलॉजी, जिसमें से प्रमुख हैं मीडिया का अंडरवर्ल्ड, चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड। दोनों बुक अमेजन पे अवेलेबल है, आप वहां जाके इन्हें खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इनके आर्टिकल, कॉलम, रिसर्च पेपर बहुत सी पब्लिकेशन में पब्लिश होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी धूम जो ये मचाते हैं, या फिर यूं कहिए गदर जो मचाते हैं, वो सोशल मीडिया पे है। ये ट्विटर और फेसबुक पे एक्टिवली और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे स्वैग के साथ अपनी बातों को कहते हैं और एक दिलचस्प इनका अंदाज है, पूरा ह्यूमर के साथ मिक्स करके सोशियोलॉजी से कैसे बताया जाए वो भी अपने आप में, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो उन लेखों का, उन पोस्ट का दलित और बहुजन पे तो बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता ही है, लेकिन सवर्णों को भी एक तरह की फ्री की कास्ट एजुकेशन दे देते हैं। तो मैं प्रोफेसर मंडल के काम को बहुत समय से फॉलो करता आ रहा हूं, मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। तो मेरी बहुत इच्छा थी इनसे बात करने की, तो मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे ये मौका मिला। सो थैंक यू प्रोफेसर मंडल फॉर कमिंग टू अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट।
हाँ, इतनी तारीफ कौन करता है, इतनी बड़ी बड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मजेदार बात की है कि जो आपने कहा कि मैं दलित बहुजनों को इंस्पायर करता हूँ या उनको बताता हूँ, दरअसल मैं जो लिखता हूँ वो ज्यादातर जो जिसको भारत में अपर कास्ट या सवर्णा या द्विज कास्ट जिनको बोलते हैं, मतलब मेरा ज्यादा ध्यान तो उन पर रहता है। मतलब इनफैक्ट मैं बोलता भी हूँ कि मैं जो सेंटर फॉर ब्राह्मिन स्टडीज का स्कॉलर हूँ।
हाँ, मैंने भी अपना फेसबुक पे चेंज कर दिया था कि मैं भी ब्राह्मिन स्टडी का प्रोफेसर हूँ, तो हम कलीग हो गए एक तरह से।
ग्रेट।
तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है उसमें आपने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है कि सबसे ज्यादा आपके पीछे ट्रोल्स लगते हैं, जितने भी आरएसएस के बोल दीजिए, बीजेपी के बोल दीजिए, या फिर कई वोक लोग भी पड़ जाते हैं, लिबरल भी पड़ जाते हैं, हर तरह के ट्रोल आपके पीछे, आपकी बातों से नाराज होकर आपके पीछे लगते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि आपने इसका कभी भी वो नहीं, विक्टिमहुड नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे सवर्ण जर्नलिस्ट हैं उसी पे आर्टिकल लिख देते हैं कि आज देखो मुझे ट्रोल कर दिया, उस पे बड़े बड़े आर्टिकल और बहुत सारी चीजें आ जाती
हैं। अरे लोग किताब तक लिख देते,
किताब तक लिख देते हैं। लेकिन आपने बोला है कि मुझे तो खुशी होती है कि ट्रोल करे, उससे एंगेजमेंट बढ़ता रहता है, तो ट्रोल मेरे ट्रोल्स को बहुत पसंद करता हूं।
मैं क्लेम करता हूँ कि ट्रोल्स का सबसे बड़ा चिड़ियाघर मेरे पास है और सब मेरे ट्रेंड लोग हैं, सब मेरे लिए काम करते हैं। हाँ। और मैं बताऊं कि मैं उनको बहुत इज्जत के साथ अपने पास रखता हूं। मैं बहुत ही, अगर मुझे वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दें, तो मैं उनको ब्लॉक नहीं करता, मैं बहुत इज्जत के साथ रखता हूं। और मुझे अफसोस है कि मैं उनको पे नहीं कर पाता हूं, वरना ट्रोल्स तो मुझे इतने पसंद है कि क्या बताऊं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं आपको और अपने आपके सुनने वालों को भी कि ट्रोल्स करते क्या है। वो जब जैसे गाली दे देते हैं तो वो इस बात को जानते नहीं है कि जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, इसके हिसाब से वो अपने उनके फॉलोअर्स और फ्रेंड्स के पास मेरी पोस्ट के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से वो मुझे नया ऑडियंस देते हैं और नए लोगों तक मेरी बात जाती है और मेरा काम होता है। बस अफसोस इस बात का है कि मैं उनको हर कमेंट पे 2 रुपए नहीं दे पाता हूँ। दैट्स माय रिग्रेट, आई शुड हैव इवॉल्व्ड सम मैकेनिज्म टू पे देम, लेकिन मैं उनको पे नहीं कर पाता हूँ, इज्जत पूरी देता हूँ। मतलब इज्जत में कोई कमी हो जाए तो मुझे कोई शिकायत कर सकता है कि भाई आपने इज्जत नहीं दी। तो ट्रोल्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अजीब सा तंग पर परेशान और दुखी हो जाता हूँ, जैसे रवीश या वो क्या नाम है, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनका जो, उनको लेकर जब इसकी कोई बात कही जाती है तो उसका एक स्टिग्मा और बहुत सारे चूंकि उसमें है। लेकिन ये बोलने से डर जाना कि मैं आपको नंगा कर दूंगा और आपकी माँ की और आपकी बहन की, जस्ट इनकेस अगर कोई बोलता भी है आपका, आपकी टाइमलाइन निश्चित रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है वहां पर, खास करके बहुत सारे साफ सुथरे लोग थोड़ा सा आपको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से ये बोलना कि हाय मार डाला, हाय मेरा तो बर्बाद कर दिया, हाय मैं क्या करूं भाई, ऐसा है कि ट्रोल से आपको डर लगता है तो एक तो आपको सोशल मीडिया में होना नहीं चाहिए, और दूसरे हैं तो खेलिए ना खेल। अब ये तो मतलब आप ये ट्रोल्स पर कोई किताब क्यों वेस्ट में नहीं लिखी गई, क्योंकि वो इसको इशू नहीं मानते हैं भाई, ये इशू है भी नहीं, इसका विक्टिम हो रहा बिना मतलब रो के, मतलब लोगों ने क्या क्या कर लिया अपने लिए, मतलब जस्ट अमेज कि वो इस काम को ज्यादा रोना पिटना पिटना करते हैं भाई। इन पब्लिक डिस्कोर्स में जो को पॉइंट्स काउंटर पॉइंट्स और कॉन्ट्रेरियन व्यूज होते हैं, और उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमेशा वो बात बहुत डिसेंट, बहुत एकेडमिक, बहुत सलीके से कही जाएगी, जरूरी नहीं है। आप हमारे आसपास की जिंदगी में कितनी गालियां हैं,
बिल्कुल
मतलब हम क्या मतलब बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, और इवन कहीं पर भी होते हैं, तो गालियां तो हैं हमारे लाइफ में, आप उसको नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मेटिव पोजीशन हो सकती है, लेकिन इसको लेकर हाय तो वहां मचाना, तो मैं बहुत एग्री नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि इसको लेकर बहुत आफत करने की जरूरत नहीं है। और बहुत हुआ तो क्या है, ये जैसे जो बड़े एडिटर्स हैं भाई, 10,000 रुपया दे के एक आदमी को रख लीजिए, और जो आपको कहे उसको ब्लॉक करते चलिए ना, रोना क्यों है अपना, आप रो क्यों रहे हैं, करना क्या है, आप किसी दिन बैठाइए और 3 दिन के पीछे के पोस्ट में जिसने गाली दी ब्लॉक कर दीजिए, एक तरह से वो ब्लॉक करने करते करते वो आपकी टाइमलाइन साफ हो जाएगी, जगह जस्ट इन केस अगर आपको इतनी शिकायत है तो। और इज्जत जो है ये बहुत फ्यूडल किस्म की बात है, यहाँ तो लोगों की क्या क्या हो, मतलब निजी जिंदगी में लोगों की क्या क्या हो रहा है, आपको वर्चुअल में किसी ने गाली दे दी और इसकी वजह से आपकी इज्जत खराब हो गई, कितने इज्जत वाले हैं भैया आपके, मतलब और उतनी फ्रेजाइल इज्जत है तो बचा के रखो यार, वही वही यू आर इन सोशल मीडिया, मतलब यहाँ तो आपके सामने वाला आपको अगर नंगा होने लायक आपके पास पूछे तो नंगा करके जाएगा ना, मतलब आप अगर किसी पार्टी के लिए आपने दलाली की तो आपको नंगा करके जाएगा ना वो आदमी भैया, आप कैसे अवॉइड करोगे, या तो आपने कमेंट बॉक्स बंद, कमेंट का ऑप्शन बंद रखो, आप नंगे होने के काबिल हैं तो नंगे होंगे,
बट आपने
नहीं है तो
कभी
गाली
भी
देके
ऑफ नहीं रखा,
चुपचाप
मैंने देखा कभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रखा
कमेंट
आपने।
ऑप्शन नहीं, वो मैंने तो कहा कि मैं उनको पैसा नहीं देता हूँ, इसका अफसोस है, मैं तो ट्रोल्स को बहुत दूसरे तरीके से लेता हूँ, उनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, तो क्या बताऊँ कितनी इज्जत करता हूँ उनकी नहीं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं।
तो उससे आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम कुछ भी वो नहीं होता, कि कोई भी आपको बिल्कुल भी झटका कोई दर्द कुछ भी नहीं होता अगर किसी भी प्रकार की ट्रोलिंग आती है, क्योंकि आज के टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि सोशल मीडिया एक टॉक्सिक स्पेस है, इसको हम कैसे डील करें, मेंटली हमें बहुत इफेक्ट करती है, तो आपको मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रोलिंग आती है। जैसे रिसेंटली ये भी इसको एक बार इसको इससे जोड़ दूं कि रिसेंटली आपने कुछ एक पोस्ट लिखा था जिससे कि वो पूरा ही ट्रेंड करने लगे, अरेस्ट दिलीप मंडल, और बहुत से लोग आपके पीछे पड़ गए, तो मुझे लगा अभी आप थोड़ा काम डाउन कर देंगे अपनी पोस्ट को, थोड़ा सा रिस्ट्रेन करेंगे, लेकिन आप उसके बाद भी
नहीं, उस दिन तो मैं वो
उसी
और ज्यादा उस दिन तो और ज्यादा चढ़ के उसको मैंने, और मैंने अरेस्ट दिलीप मंडल वो ट्रेंड करा रहे थे, 1.5 लाख ट्रेंड जब ट्वीट हो गए तो
हाँ
मैंने खुद उस हैशटैग पे ट्वीट किए 5 कि भाई थोड़ा और चढ़ जाए, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, मतलब मैंने जो किया, मैं मीडिया लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि मैं कोई इलीगलिटी कर नहीं सकता हूँ, मुझे मैंने पढ़ाया है इनफैक्ट मीडिया लॉ, तो मैं जब लिख रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, नॉट ऑन द रॉन्ग साइड, सो मैं उसको लेकर बहुत कंफर्म हूँ। मैंने क्या किया था उस दिन, मतलब 2 लाइन लिखी थी जो महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब की लाइन है, उस बुक को गवर्नमेंट ने छापा है, इंडिया गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उस बुक को वो डिनाई नहीं कर सकते, वो एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं उनके बारे में, प्रधानमंत्री उनके बारे में हर जन्मदिन पर बधाई देते हैं, उन पर डाक टिकट जारी हुआ है, उनके नाम पर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी किताब की 2 लाइन अगर हमने छाप दी और इससे किसी की भावना आहत हो गई, दरअसल मैंने तो उनकी भावना आहत करने के लिए लिखा था, तो भावना उनकी आहत हो गई, उन्होंने
मिशन
अब कम से कम
अकम्प्लिश्ड।
इतने सारे मेंबर ऑफ, हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, उनके पार्टी प्रवक्ता सब डिमांड कर रहे हैं इनसे, अपने योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह के से कि अरेस्ट करो, मतलब आपको, अरे यार सांसद हो यार, फोन करो ना कि अरेस्ट कर लो, कि एक केस तो करो, मतलब दो एक केस नहीं फाइल किया उन्होंने, बस ट्वीट कर रहे हैं, तो इससे मेरा क्या नुकसान हो, आप बताइए अनुराग, आप मुझे, मैं अगर आप होते, आपके नाम पर 1.5 लाख 2 लाख ट्वीट करते लोग, अब मतलब जो अपने अपने उनकी कुछ इज्जत वगैरह है वो सारा इज्जत का वजन डाल के ट्वीट करें, इतने सारे वेरीफाइड हैंडल्स तो सब लोगों ने ट्वीट किया,
मैं सर डर जाता
अल्टीमेटली
हूँ
मैंने मैं
ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है
नहीं
इस
डर तो एक
चीज़।
डर तो नहीं, डरना चाहिए, डर अच्छी बात है, डर कोई बुरी बात नहीं, बहुत नेचुरल एक बिहेवियरल प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी कई बार डर नहीं लगता, बहुत सारी चीजों से मुझे डर लगता है, लेकिन इस मामले में मुझे मालूम था कि कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अब बाबा साहब की किताब से निकाल कर, मैं जो राम की क्रिटिक है बाबा साहब की, एनालिसिस ऑफ कास्ट में रिडल्स ऑफ हाँ, तो इस उनको मैं अगर निकाल के छाप दूं तो मैं तो बोलूंगा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस साल के इस पब्लिकेशन का बुक नंबर ये मैं दे रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बुक को बैन कर ले। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कई सारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर बाबा साहब के सारे वॉल्यूम्स हैं, उसमें से निकाल कर अगर मैं ये बताऊं कि राम का जो सीता के प्रति व्यवहार था और शंभू के प्रति व्यवहार था वो गलत था, इस पर मुझको मुकदमा थोड़ी होने वाला है, इस वजह से नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली एक चीज मुझे लगता है कि अनुराग बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, मेरी एडवाइस भी है, जो लोग भी रिलीजन की क्रिटिक कर रहे हैं, समय बहुत अच्छा नहीं है, तो रिलीजन की अगर आपको क्रिटिक करनी है तो देखिए कुछ भी करके ना आप बहुत मान के चलिए, अगर आप बहुत एकदम जबरदस्त स्कॉलर नहीं है तो आप महात्मा फुले या अम्बेडकर या पेरियार से अच्छी क्रिटिक नहीं कर पाएंगे जनरली, कर सकते हैं, हो सकता है कि आप उनसे भी बड़े स्कॉलर हों, उससे तो आपको फिर वहां से ड्रॉ कर लेना चाहिए अपने विजडम। आप क्यों जोखिम में खुद को डाल रहे हैं? आप इस समय तो कोर्ट वगैरह का जो हाल है उसमें आप अंदर चले गए तो फिर चले गए, कुछ भी नहीं किया तो चले गए। हाँ, जैसे आप इस केस में देखिए ना, ये जो भीमा कोरेगांव का केस है, जिन लोगों को पकड़ के इन्होंने अंदर कर रखा है 12-14 लोगों को, कि 5 लाख की भीड़ जुटाई आपने, इनमें से किसी को औकात नहीं है कि 10 आदमी जुटा सके। उन 12 लोगों को मिल के अगर सारी ताकत वो लगा लें तो दिल्ली में या बॉम्बे में या कहीं पर वो मिलकर 200 लोग नहीं जुटा सकते हैं। उन पर आरोप है कि 5 लाख की भीड़ आपने जुटा ली है, मतलब सुधा भारद्वाज कहने पर 5 आदमी आएगा कि देश, या आनंद तेलतुंबड़े के कहने पर
नहीं आएगा,
या वो है नहीं बाबू के कहने पर इनको अरेस्ट कर रखा है, कर रखा है तो कर रखा है, मतलब कोई वजह नहीं है भाई। वहां पर हर साल आते हैं लोग, वहां पर जो हंगामा हुआ वो एक वोटे और भिड़े ने जो कराया सो कराया, उसकी वजह से हंगामा हुआ, एक आदमी मर गया उसमें। ये इन 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 बेचारों को जिनकी कुछ औकात नहीं है लोग मोबिलाइज करने की, इनको पकड़ रखा है डराने के लिए कि देखो अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो हम पकड़ लेंगे, कोई वजह नहीं चाहिए। तो इसलिए रिलीजन वगैरह पे जब लिखे तो हमको लगता है कि लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और जनरली सबसे मतलब हार्श क्रिटिक इन लोगों ने ऑलरेडी हमारे लिए प्रोवाइड कर रखी है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए ना, फिर दिमाग को रखिए और काम के लिए, मतलब जरूरी है कि हर जगह दिमाग लगाना है। आपको किसका क्रिटिक चाहिए? भगवत गीता क्रिटिक चाहिए आपके पास, बाबा साहब के पास? आपको ब्रह्मा की क्रिटिक चाहिए? फुले के पास जाइए। आपको राम की क्रिटिक चाहिए? पेरियार के पास जाइए। आप क्या कर लोगे यार, आपके औकात नहीं उतना लिखने की जो इन लोगों ने लिख रखा है, और ये सारी किताब सरकारों ने छापी है, उठा के डालो, कोई कोई उसके बाद बिगाड़ ले, कोई बिगाड़ोगे तो मतलब इन लोगों के अभी भी सरकार किसी की भी है, इन लोगों इन महापुरुषों के इतने फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो पानी के अंदर रहो ना मछली हो, तो मतलब पानी के से बाहर निकलोगे तो पकड़ लेंगे वो आपको, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। रिलीजन के क्रिटिक से बचना चाहिए, इससे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं ज्यादा, बहुत जब कोई बहुत जरूरी हो तो आप अपने पहले के स्कॉलर से ड्रॉ कर लो।
तो इसी के अंदर जो आपने बात कही कि अगर आप उनका रेफरेंस दे रहे हो तो एक ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि जो जितने भी दलित और बहुजन अकाउंट हैं जो कि थोड़े से उसमें रेडिकली जो अपनी बात रखते हैं, उन्हें थोड़ा सा रिस्ट्रेन बरतना चाहिए आजकल का जो पॉलिटिकल
जिस तरह का है उस हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बरतना चाहिए, आपको रेफरेंस बहुत साफ सुथरे रखने चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। व्हाट्सएप पे मिला है वो, आप वो बुक का पेज है कि नहीं आपको नहीं मालूम, आपको व्हाट्सएप करके किसी पेज में कुछ भी डाला जा सकता है। गो टू ओरिजिनल सोर्स, बेटर स्टिल गो टू गवर्नमेंट सोर्स, वहां से आप चीजों को उठाइए। आपको एनालिसिस ऑफ कास्ट से अगर कोई लाइन कोट करनी है तो गो टू गवर्नमेंट साइट पे ये PDF अवेलेबल है, तो आप अगर वो उसको रखिए, उसके लिंक अपने पास रखिए, उसका फोटो रखिए अपने पास, सो दैट आप जब आर्ग्यू कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि थोड़ा सा इंटेंशन का ही मामला है, चिढ़ाने की जगह अगर आप जब रिफॉर्म एजेंडा से आप उसको करेंगे ना, तो इसको सामने वाला भी समझता है और आपके लोग भी समझते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं।
बिल्कुल,
सिर्फ चिढ़ाने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, हालांकि देखिए हर्ट अगर नहीं किया होता तो दुनिया में कोई नया रिलीजन नहीं आता।
हाँ।
हिंदू धर्म की भावनाएं हर्ट हुई होंगी ना, जब सिखिज्म आ गया तो, या जब बुद्धिज्म आया तो, या जो जो कोई भी रिलीजन जब भी आया है तो वो उससे पहले के रिलीजन को कुछ तो हर्ट करके आया ना। क्रिश्चियनिटी जब इस समय आती है आपको जहां पर, तो वहां पर उससे पहले कुछ तो था ना जिसको हर्ट किया होगा, यहूदियों का धर्म रहा होगा ना जहाँ के बीच से फिर इस्लाम आया होगा, तो कोई चीज तो थी जिसको कि इवन कबीर ने अगर सोच लिया होता कि हमको हर्ट नहीं करना है किसी का सेंटिमेंट को, अगर रैदास साहब ने सोच लिया होता कि किसी को हर्ट नहीं करना है, तो वेद की क्रिटिक वो कैसे करते?
बिल्कुल,
हर्ट तो किया ही होगा उन लोगों ने, तो इसकी ट्रेडिशन रही है। अब इस समय आपको जो बाबा साहब लिख गए जो 1930s में 40s में, वो आज लिखते तो वो आग लगा देते, संभव नहीं था ये उस समय, एक अलग
ट्विटर ट्रेंड चलता वाला और ये सारा बहुत
बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता सचमुच सो फनी हो जाता, लेकिन सचमुच भी ना वो उस समय एक समय था जब लग कह दिया गया, और उन्होंने अपने बात को लोगों ने समझा और नेशन बिल्डर के तौर पर, क्योंकि उनके स्थापना है तो उनकी बातें आज की तारीख में उनके जरिए जब कही जाएंगी तो सुन ली जाएगी, अदरवाइज तो फिर आप समझ ही नहीं इसमें क्या हो रहा है। वही है कि 12 आदमी नहीं जुटा सकते हैं पर आरोप लगेगा 5 लाख जुटा लिया आपने।
तो इसमें एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि आपकी सोशल मीडिया पे आपने किस तरह से एंट्री ली, वो उस पे मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, और स्पेशली आपने जो एक अपना ही एक बात कहने का जो स्टाइल किया जो बहुत ही ज्यादा कैची है, और अपनी बात भी उसके अंदर जो स्कॉलरली एलिमेंट है वो भी उतने ही है, लेकिन जो फॉर्म है उसका बहुत ही फनी भी है और वो इम्पैक्ट कुछ करता है। जैसे मैं भी पहली बार देखा था, जो मैं भी इन मुद्दों से इतनी बात नहीं करना चाहता था, जैसे मैं खुद भी दलित बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे लगता था ऑनलाइन इन चीजों की क्यों बात करें किसी को, क्यों मेरे जो दोस्त हैं उनसे फिर दूर होने लग जाएंगे, तो मैं सोचता था कि इस बारे में ज्यादा बात नहीं की जाए। तो मैं आपका जो स्टाइल देख के मुझे भी बड़ा मजा है आपका, जिस तरह से लिखते थे खुल के सारी बातें बिना डरे, तो उससे मैं भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने वो एंट्री किस तरह से ली और ये फॉर्म किस तरह से आपने डेवलप किया ऐसी बात कहने का।
देखिए मेरी एंट्री मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे जो हो रही है वो 2006 के आसपास हो रही है। मैंने ब्लॉग्स पर काम करना शुरू किया था उस समय, अपना एक ब्लॉग बनाया था कुछ लोगों ने मिलकर rejectmal.com नाम से .blogspot.com rejectmal, और दूसरा एक mohalla.blogspot.com था, एक kabadkhana.com था, इन पर हम मैंने लिखना शुरू किया था। और इस समय देखिए उस समय आप देखिए कई बार हम लोग जैसे सोशियोलॉजी में करते क्या है कि कोई भी इवेंट अगर देखना होता है तो उसमें दो चीजों को देखते हैं कि वो किस आदमी की जिंदगी में हो रहा है, मतलब उसकी बायोग्राफी क्या है, और किस हिस्टोरिकल इपॉक में हो रहा है। तो हिस्ट्री और बायोग्राफी का जो इंटरसेक्शन है उसी पर उस समय का उस आदमी का ट्रुथ होता है। तो मेरी उस समय की बायोग्राफी तो ये थी कि मैं उस समय ऑलरेडी मीडिया के अंदर था, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर था, ठीक ठाक पोजिशन पे था, एडिटर जैसी पोजिशन थी मेरी, और मैं लेकिन हिस्ट्री में उस समय क्या हो रहा था, 2006 बहुत टर्बुलेंट टाइम था, अर्जुन सिंह ने उस समय ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, देश भर में आग लगा हुआ था उस समय, आग लगी हुई थी, और इसके अलावा एम्स में जो अपर कास्ट के डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी और मरीजों को बाहर कर दिया था हॉस्पिटल से, उसमें कई मरीज मरे भी थे। तो बहुत मतलब ये उथल पुथल के समय था, मुझे उस समय की रिपोर्टिंग जब मैंने देखी तो मुझे बहुत स्पष्ट उसमें अपर कास्ट बायस नजर आया। इनफैक्ट उसके बाद एक CSDS के उस समय योगेंद्र यादव और अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार ने एक स्टडी भी की कि जो मीडिया का कंपोजिशन है उसमें किस कास्ट के कितने लोग हैं, और उन्हें एक क्वेश्चनेयर भेज के सारे मीडिया हाउस से मंगाया था, 35 मीडिया हाउस से, और उसमें पता चला था कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास जो मीडिया जो है वो अपर कास्ट है, अपर कास्ट हिंदू है, और उसमें मेल ज्यादातर है। तो ये सब पता चल रहा था कि ये टाइम था, तो कास्ट से बहुत कम बात करना चाहते हैं लोग, और कास्ट पर जब भी बात करते हैं तो रिजर्वेशन की क्रिटिक करते हैं, ये मैंने उस समय सेंस किया। तो मैंने थोड़ा सा उसको मतलब स्कोप ऑफ डिस्कोर्स को वाइडन करने की कोशिश की कि लेट्स फेस इट, सामने से देखते हैं, हेड ऑन करते हैं, उसका उसकी सींग पकड़ते हैं, बात करते हैं क्या है। तो उस समय फिर मैंने कास्ट को खुलकर लिखना शुरू किया। उस समय एक एडिटर हुआ करते थे प्रभाष जोशी, उन्होंने लिखा एक इंटरव्यू में बोला कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन इसलिए हैं क्योंकि ब्राह्मणों में धारण क्षमता होती है, ये इंटरव्यू rivivar.com में छपा था। अच्छा। और कामली इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसमें वो जो सस्टेन करने की कैपेसिटी है वो कास्ट के तौर पर उसके पास कम है, तो इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस तरह की बातों पर मैंने क्रिटिक करना शुरू किया। फिर फिल्म के अंदर जिस तरह से जो डिबेट हॉलीवुड में है हॉलीवुड की डाइवर्सिटी को लेकर, उसको मैंने यहाँ पर बॉलीवुड को लेकर वो सारे क्वेश्चन शुरू करना शुरू किया। तो मतलब जो एक जिसको अश्लील विषय माना जाता है कि कास्ट पे बात करना, जैसे कुछ वो करने से कुछ हाथ गंदा हो जाएगा टाइप का, तो उसको मैंने उसका स्कोप पूरे डिस्कशन का बड़ा करना शुरू किया, और उसी पर फिर मैंने उसके बाद समय पर फिर फेसबुक आया 2007 के आसपास, मेरे ख्याल से इंडिया में उसकी पॉपुलरिटी बढ़नी शुरू हुई। तो ब्लॉग में भी मैं शुरुआत की, जो भारत में 500-700 ब्लॉग बने होंगे उसी समय मैं ब्लॉग में आ गया था। फिर फेसबुक के बहुत शुरुआती लोगों में था, ट्विटर पर मैं आ गया, ट्विटर पर थोड़ा लेट मैं एक्टिव हुआ बाद में। तो ये मेरा मतलब इसमें जो प्रोजेक्ट है वो है पूरे स्पेस को डेमोक्रेटाइज करना, जो वॉइसेस हैं जिनकी वॉइस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ही एक मोनोक्रोम क्रोम टाइप का एक डिस्कशन डिस्कोर्स होता है, बहुत ही वनीला और आलू टाइप का।
बिल्कुल।
तो मैं आलू मुझे पसंद नहीं है असल में, आई डोंट लाइक पोटैटोज एक्चुअली, सो और वनीला भी पसंद नहीं, आई लाइक ब्लैक करंट और ऑल दोस मतलब। तो मुझे तो जो क्योंकि आलू पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसमें वो जो तीखापन लाने की कोशिश की, क्योंकि ढक के छिपा के रखना है, जो आलू होना है वो चीजों को आप कवर के अंदर रखते हैं, तो मैं इस सरफेस को स्क्रैच करता हूँ। और दूसरी बात, शायद मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ इसमें और पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ कि इस तरह के डिस्कशन का जो गेज है, जो नजर है, जो देखती है, अभी तक उसमें ये था कि इसका गेज था कि ऊपर से नीचे को देखो कि हाय दलितों को एक साथ इतना अत्याचार हो गया, हाय उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हाय ओबीसी कहीं नहीं है। मैंने उस गेज को पलट दिया, एंड जो मैंने किया कि वो पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, नीचे से कैसा दिखता है। तो मैंने उस अब इसी का लैंग्वेज क्या है कि भाई सरकारी पदों पर दलितों को कुछ नहीं मिला, मैंने नीचे से देखा तो मुझे दिखा कि ऊपर के पदों पर सवर्ण है। अब ये लैंग्वेज मेरी वहां से आ रही है कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है कि दलित नहीं है, मतलब कोई नहीं खा रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कोई ज्यादा खा रहा है। तो मैं इसलिए दलित स्टडीज की जगह ब्राह्मण स्टडीज जो है उसके पीछे मेरा मेरी वो जो उसके पीछे आइडिया है, इसको यूएस सोशियोलॉजिस्ट मार्टिन निकोलस ने सबसे पहले 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल कांग्रेस में एक स्पीच दिया था, फैट कैट सोशियोलॉजी। उस स्पीच में ये आया था कि डोंट लुक डाउन एंड रिपोर्ट टू द अप, आप नीचे देखो कि क्या हो रहा है, दलित आपस में कैसे झगड़ रहे हैं, और इसके बारे में अपर कास्ट मत बताओ, आप देखो कि अपर कास्ट में क्या हो रहा है। मतलब वहां उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, वो विदेश नहीं जाते थे, अचानक जाना शुरू कर दिया, कब उन्होंने संस्कृत छोड़ के इंग्लिश अपना लिया, तो उनकी स्ट्रेटजी को पकड़ो, उनको देखो कि वहां पर वहां क्या एक्शन है। तो मेरी गेज असल में इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, मैं ऊपर से नीचे को देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है, जैसे आप देखिए कि एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इस समय आप दलित पर पीएचडी ढूंढने जाइए तो इंडिया के 700-800 यूनिवर्सिटी में आपको एक साल के अंदर में कम से कम 1500 पीएचडी मिल जाएगी। ब्राह्मण पर पीएचडी देखने जाइए, पिछले 10 साल में ब्राह्मण के पीएचडी नहीं, नोबडी इज लुकिंग एट द प्रॉब्लम, मतलब सब लोग विक्टिम को देख रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये मेरी गेज और मेरी लैंग्वेज एक्चुअली वहां से आती है कि मैं वो मार्टिन निकोलस और गेल ऑम्बेट वाले स्कूल से हूँ जो कि इलीट स्टडीज करती है, जो मतलब नीचे से ऊपर देखती है, पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो। जॉन पी मेंचर ने इस काम को किया, उनकी एक पूरी थीसिस ही है पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, प्रोफेसर विवेक कुमार जो सोशियोलॉजी के आजकल हेड है जेएनयू में, उनकी एक किताब है। तो ये ट्रेडिशन है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखो, प्रॉब्लम की तरफ देखो, आप विक्टिम की तरफ मत
देखो। तो इसी में एक
मैंने पूरा क्लासरूम लेक्चर की तरह लंबा,
ओके मैं पहले तो सर पॉडकास्ट में आप खुल के पूरा जितना भी डायमेंशन एक्सप्लोर करना कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं है, आप दिल खोल के बोलिए, हमें तो सुनने में बहुत मजा आ रहा है, तो आप और लंबा बोल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये मेरा सवाल ये था कि इसमें आपने एक बात बोली कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जो जितने भी पत्रकार थे वो ओपनली कुछ भी बोल सकते थे और उनका कोई चैलेंज किसी प्रकार का नहीं आता था, विनोद कांबली के बारे में और सचिन तेंदुलकर के जीन्स के बारे में
कुछ भी लिख दिया,
कुछ भी लिख दिया, कोई चैलेंज भी नहीं था,
मेरिट नहीं है, ऐसे होते हैं, मेरिट खत्म हो जाएगा रिजर्वेशन होने से, दे दे दे, मैंने उनका फील्ड देखा, खाली मैदान था उनके लिए।
जैसे मैं लोकल की भी बात करूं, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं जयपुर में, तो राजस्थान पत्रिका जो यहां का न्यूज़पेपर है सबसे बड़ा, उसमें जो गुलाब
कोठारी, तो बहुत अजीब अजीब राज्य है भाई वहां तो आज की तारीख में हम तो कहीं बात भी कर लेते हैं यूपी बिहार में कास्ट वगैरह की,
राजस्थान तो बहुत, तो सबसे कास्टिस जगह होगी मेरे हिसाब से,
सबसे कास्टिस्ट शायद
हरियाणा,
सबसे कास्टिस्ट अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा कि पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल बोलेंगे लोग नॉर्मली, उस पे नहीं देख, उस पे आप थोड़ा एलोबरेट करेंगे क्योंकि नॉर्मली इससे बंगाल को हम बड़ा लोग जो नॉर्मली उसको इंटेलेक्चुअल हब और उस तरह का उससे जोड़ के देखते
हैं। बहुत बड़ा फार्स है, बहुत बड़ा नाटक है, मतलब इतना बड़ी बड़ी मतलब छल कपट करके उन्होंने अपनी एक इमेज क्रिएट की है। मैं आपको जैसे आपको किसी भी अर्बन सेटिंग में, इवन डायस्पोरा में, यूएस या अमेरिका में, आप पूछिए कि भाई आप 20 बंगालियों के नाम बताइए जिनको आप जानते हैं, और सिर्फ आप उनका सोशियोलॉजिकल स्टडी कीजिए कि वो उनकी बैकग्राउंड क्या है, तो 99.9% केसेस में वो 20 अपर कास्ट के नाम लेके आ जाएंगे।
बिल्कुल,
इतना बुरा हाल इंडिया में मेरी जानकारी में, अगर अब जहां मेरी स्टडी नहीं है वहां हो सकता है कि हो, नहीं ओडिशा में भी नहीं, मुझे, मैं बिल्कुल पक्के तौर पे कह सकता हूँ, एकदम 100% डेफिनेटिव विथ एम्पेरिकल डाटा कि इतना ज्यादा अपर कास्ट डोमिनेशन इन पब्लिक डिस्कोर्स भारत में कहीं नहीं है, जहां पर सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे पत्रकार, सारे साहित्यकार, सारे ओपिनियन मेकर्स सिर्फ 3 कास्ट से हैं, और इसकी वजह से वहां पर जो 90 से 95% पॉपुलेशन की कोई आवाज हम कभी नहीं सुनते हैं। हम एक भी दलित बंगाली लेखक के बारे में नहीं जानते हैं ज्यादातर लोग, एक भी ओबीसी बंगाली लेखक के बारे में नहीं जानते हैं, एक भी मुसलमान, जो वहां पर लगभग 25% पॉपुलेशन, कौन है उनका राइटर, कौन ऑथर, कौन फिल्म, मतलब फिल्म में देख रखी आई भी अभी, तो मतलब आपको ये पूरा स्पेस जब इस लेवल का की हेजमनी है कि बाकी सब किस लोग सांस ले रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है, क्यों है भी है भी कि नहीं है, कौन बंगाली भद्रलोक है भाई, कौन कॉफी हाउस में बैठ रहा है, कौन बंगला का एकेडमिया है, यूनिवर्सिटी में कौन है, ब्यूरोक्रेसी में कौन है वहां का डॉक्टर, ये कहां विजिबल ही नहीं है भी नहीं। और उनकी इतनी देखिए कास्टिस्ट स्टेट किसको बोलते हैं भारत में, तमिलनाडु सबसे कास्टिस्ट है, सबसे कास्टिस्ट बिहार को बोलते हैं, सबसे कास्टिस्ट यूपी को बोलते हैं, जहां पर लोअर कास्ट असर्शन है वो कास्टिस्ट हो गए, जहां महाराष्ट्र बहुत बहुत कास्टिस्ट है, कर्नाटक बहुत कास्टिस्ट है, जहां भी केरला, जहां पर भी कास्ट के खिलाफ आंदोलन हुए हैं वो स्टेट्स कास्टिस्ट कहे जाते हैं, जहां कास्ट के खिलाफ आवाज नहीं उठी वो कास्टलेस है, इसलिए बंगाल कास्टलेस है क्योंकि वहां पर लोअर कास्ट असर्शन ही नहीं, हो ही नहीं, होने नहीं दिया गया, वो इस लेवल का वहां पर बौद्धिक स्तर पे इतना दमन है कि किसी और की आवाज ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर जो लोअर कास्ट का आदमी वो भी कहता है यहाँ तो कास्टिज्म है ही नहीं, भाई कास्टिज्म नहीं है, मैं बंगाल का कौन सा न्यूज़पेपर है उसका ऑफिस जाऊं, कहां कौन से कॉफी हाउस में जाऊं, किस आर्ट एंड कल्चर के सेंटर पे जाऊं और जहां मुझे 5 भी दलित और ओबीसी का आदमी दिख जाए और मुसलमान दिख जाए। तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूरी आवाजों को बंद कर रखा है, और बंगाल को लेकर मैं बहुत डेफिनेटिव तरीके से कह सकता हूँ कि वो भारत का सबसे कास्टिस्ट स्टेट है। अभी तक शायद पूरे भारत का अकेला स्टेट है जहां पर कोई दलित, कोई ओबीसी, कोई मुस्लिम, कोई इंटरमीडिएट कास्ट का आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बना है कहीं भी, या ऐसा ऐसा ये ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर कि अब तक ओबीसी एसटी मुसलमान चीफ मिनिस्टर ना बना हो। बंगाल में एक मिनट मुझे याद करने दीजिए, सिद्धार्थ शंकर फिर नहीं, एक भी नहीं बना है, कोई नहीं, एक भी सब वहां पर बस 3 कास्ट ने सारा कुछ, सब कुछ 3 कास्ट के पास है। और अभी एक स्टडी में आपको और बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हार्वर्ड में भी मुझे मिले थे, नवीन भारती वो बेंगलोर आईआईएम के प्रोडक्ट है और हार्वर्ड में आजकल पोस्ट डॉक फेलोशिप कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टडी की है अंदली रहमान और एक और स्कॉलर, 3 स्कॉलर्स ने मिलकर, ईपीडब्ल्यू में भी छपा है, कई जगह छपा हुआ है, द प्रिंट में भी एक लेख छपा था उनका। तो उनकी एक स्टडी है जो 2011 सेंसस से उन्होंने निकाला था कि क्योंकि उसमें पहली बार जो इनुमरेशन गिनती के ब्लॉक्स हैं उनका साइज जो डाटा का है वो छोटा कर दिया गया था 800 लोगों के आसपास का,
तो उससे पहले 30,000 के ब्लॉक्स में डाटा आता था, रिलीज होता था। तो ये जब डाटा रिलीज किया गया तो उनको ये दिखने लगा कि किस मोहल्ले में कौन रहता है, ये क्योंकि शेड्यूल कास्ट का डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो बंगाल कलकत्ता में खास करके जब उन्होंने डाटा को कलेक्ट देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर, तो उनको पता चला कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसी कॉलोनी है जहाँ एक भी दलित नहीं रहता है। मोस्ट सेग्रीगेटेड शहर है, जिसको कि सबसे प्रगतिशील शहर का झूठा एक उन्होंने ओढ़ लग रखा अपने ऊपर।
शायद द प्रिंट में इसको छापा था, एक आर्टिकल के रूप में भी मैंने पढ़ा था।
नहीं छापा था, लेकिन उससे पहले वो रिसर्च पेपर आ चुका था, पर वो शायद बुक वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो वो नवीन भारती एंड अदर्स जो अंजलि ब्रह्मान और एक और पता नहीं क्यों नाम भूल रहा हूँ, तो ये सॉरी भी मेरा, तो वो उनका एक रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है कि कैसे अर्बन सेंटर्स में कास्ट कैसे काम करती है। जैसे आपको बम्बई में कम से कम सैकड़ों कॉलोनीज हैं जो सिर्फ जो अपार्टमेंट्स जिसमें सिर्फ एक जात का आदमी रहता है। बॉम्बे में सबसे मॉडर्न शहर, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से वहां चल रहा है, मतलब आज उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की 100 साल की हिस्ट्री है, इसके बावजूद बॉम्बे में लोगों ने जाति के आधार पर सारे अपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो सैकड़ों अपार्टमेंट आप देखिए, दादर में जाके देखिए ये अपार्टमेंट, मतलब और उसको कैसे मैनिफेस्टेशन होता है।
मैं इसका अच्छा एक आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मैं एक ब्रोकर के पास गया था वहाँ पे, तो बंगाल उनका गुजराती का कोई था, गुजराती कोई मैं पता नहीं कास्ट क्या, बट कोई गुजराती का अपार्टमेंट था। ब्रोकर दिखा रहा, बोला सर आपकी कास्ट क्या है वैसे? तो मैंने कास्ट का क्या पूछना है, बोला कि नहीं वो ओनर पूछता है कास्ट। तो उनका अच्छा, तो वहाँ पे तो मैंने बॉम्बे में, और वो अगर आप
कॉस्मोपॉलिटन
उसमें भी अगर आप मुस्लिम हो तो भूल ही जाओ, तो पहला क्वेश्चन आप मुस्लिम तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है तो मिलेगा ही नहीं, वो तो कंफर्म है। उसके बाद वो कास्ट भी वो एक फैक्टर है वहाँ पे। तो ये सारी
नहीं, अब ऐसे ना देखिए ना, मिथिला अपार्टमेंट, अब कहने को मिथिला अपार्टमेंट है लेकिन सिर्फ ब्राह्मण बैठेगा वहाँ पर, उसके अलावा किसी को मेंबरशिप ही नहीं थी सोसाइटी की। अब दिल्ली में है, मतलब आप मॉडर्निटी जो है ना इंडिया की, बहुत बास्टर्ड टाइप की मॉडर्निटी है, मतलब कहाँ ट्रेडिशन खत्म हो रहा है और कहाँ मॉडर्निटी आ रही है, इसके बीच में इतना घालमेल है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, यूरोप में आप जाइए या वहां जाइए, लोगों से पूछिए कि भाई आपका गांव कहाँ है, तो बोले गांव व्हाट इज गांव, मतलब हम आगे शहर में है, अब यहाँ का आदमी है, यहाँ से हम किसी और शहर में जाएंगे, व्हाट इज गांव। अब यहाँ पर भारत में ज्यादातर लोग का एक, हर आदमी का एक पीछे गांव है, उसमें से जो मजदूर है वो तो 2 महीने के लिए खेती कराने चला जाता है, और उसके बाद जो थोड़ा समृद्ध है वो मतलब पिकनिक करने के लिए और अपने कास्ट प्रिविलेज को एंजॉय करने के लिए गांव में चला जाता है। वहां पर तो एकदम पैर छूते हैं लोग, नमस्कार करते हैं, मतलब पिकनिक है उनकी, मतलब लेकिन वो पीछे छूटा नहीं है उनका। तो वो जैसे अमेरिका में चला जाएगा ना, तो अपनी जात और गोत्र का हिसाब वसाब लगा के शादी करने के लिए यहाँ आएगा। और आप अमेरिका में brahminmatrimony.com चलता है, मतलब जस्ट इमेजिन द ऑडासिटी ऑफ द सिचुएशन। सारे लोगों के कास्ट बेस्ड ग्रुप है वहां पर, कमाज रेड्डीज ब्राह्मण्स, मतलब सब के एसोसिएशन है, और वो आपस में मिलते हैं, वो मतलब ना वो क्लोज्ड इनक्लोजर्स हैं जिसके अंदर वो मिलते हैं, उन्हीं के पिकनिक करते हैं, वो आपस में मिलके कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, उनके आपस में उनके मिलने जुलने के कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मतलब अमेरिका भी ले गए वो, मतलब वो यहाँ की बीमारी ना। और अब देखिए वहां तो मतलब वो सिस्को
वाला केस,
मतलब वो मतलब उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं वो वहां पर भी, वो यहाँ से फिर अपना एक रिश्तेदार को ले जाएंगे, रिश्तेदार कास्ट का है, उसी को वहां पर इम्प्लॉय करेंगे, मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर को वो ढो रहे हैं। तो यहाँ की मॉडर्निटी, जो इंडियंस की मॉडर्निटी है ना, मतलब मॉडर्निटी की डेफिनेशन क्या है, मतलब ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, ये यहाँ पर जो है वो जड़ों से जुड़ा रहना कितना ग्लोरीफाई करते हैं, वो आदमी जड़ों से जुड़ा हुआ है। क्यों जड़ों से जुड़ा हुआ है, मतलब मूव कैसे करोगे, जड़ों से जुड़ा हुआ है तो मूव,
बांसुरी बजती है, कुछ बहुत ही अच्छा सनसेट होता है,
जो कविताएं हैं, कितनी कविताएं हैं,
मेरा गांव
स्कूल में पढ़ाते हैं ना,
फ्लारी लैंग्वेज में वो उसको
भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है आंचल। अरे भैया, मतलब होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, मतलब सब कुछ के लिए आप अर्बन सेंटर्स में आ रहे हो, भारत माता ग्राम वासिनी, मतलब क्या कहे ग्राम वासिनी भैया, बिल्कुल, मतलब देखिए इस समय तमिलनाडु 50% के आसपास अर्बन हो गया है, दे आर हैप्पी, तो खुश है वो, तो काय को आप ग्रामवासिनी काय को रहना जबरदस्ती करना है, मतलब गांव आपको गांव सस्टेन कर पाएगा क्या? 16% ऑफ जीडीपी सिर्फ एग्रीकल्चर से है, 65% पॉपुलेशन है, गांव आपको सस्टेन कर पाएगा? गांव में आपका रहने का मतलब है आप वहां पर मतलब गरीबी में रहेंगे, आपके मतलब उस गांव को संभालने के औकात नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं, आपका फ्यूडल से अब कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, अर्बन में जो नहीं जाएगा वो मरेगा, अपर कास्ट ऑलरेडी स्विच कर गया है अर्बन सेंटर्स की तरफ, वो बस अपना कास्ट प्रिविलेज को एंजॉय करने के लिए कभी कभी गांव जाता है बस वहां पर अपनी सामंतगिरी दिखाने के लिए, वरना उसको गांव से कोई लेना देना नहीं है, वहां जाते हैं वहां पर बढ़िया से वो फोटो वोटो गाय वगैरह के सामने और सरसों का खेत में पीला पीला खेत
फेसबुक के लिए अच्छे फोटो आ जाते हैं, अच्छे लाइक मिलते हैं इससे,
अच्छे लाइक मिलते हैं, बस उतना सा है कनेक्शन, तो वो मतलब वी शुड ब्रेक फ्री, मतलब काहे को भैया वहां नहीं संभाल सकता वो आपको, अब उनके उनकी वो पॉसिबिलिटी नहीं।
हाँ मतलब मेरा जो बिल्कुल भी विलेज का कोई भी किसी प्रकार का रोमांटिसिज्म किसी भी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो अपने गांव को बहुत अच्छे से देखा।
दलितों के लिए उससे बुरी जगह को हो ही नहीं सकती,
और कोई बुरी जगह हो ही नहीं सकती, इतना क्लियर सेग्रीगेशन है, क्लियर वो है,
मतलब गांव के अंदर से, मैं तो गांव का थोड़ा आर्किटेक्चर में मेरी दिलचस्पी है, मतलब बह के नाला जिस तरफ जाएगा गांव का ना उस तरफ दलितों की बस्तियां बनाई जाती है,
बिल्कुल
दक्षिण टोला जिसको बोलते हैं, मतलब जिधर ढलान रहती है पूरे गांव का नाला जिधर जाके बहेगा उधर, आप स्ट्रक्चर देखो गांव का, स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से गांव बसाए गए हैं, अलग अलग टोले और उसमें जो मतलब एक दूसरे को छू सकती हैं वो जाती हैं अगल बगल में, फिर गांव के बाहर, फिर मतलब वो सारा कुछ उस तरह से उसको
वो उसको कल मैं एक डिस्कशन कर रहा था क्लब हाउस के ऊपर, तो मेरी एक दोस्त थी वो दलित है बिहार से, तो बता रही थी हमारे गाँव में इस तरह से डिजाइन है कि हवा का जो रुख है तो पहले अपर कास्ट की तरफ जाए फिर उनकी तरफ जाए, मतलब वो इस विलेज का इस तरह से डिफाइन, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दलित की हवा उन पे लग जाए उधर जाके, बोले इतना क्लियर
आर्किटेक्चरली वो है, करते होंगे क्योंकि हवा तो पूर्वा और पछवा दोनों बहती है, लेकिन मतलब
बट सोच 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 की बात है कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं।
हां तो जहां ऊंचा है थोड़ा सा हाइट है उधर तो वो ले लेंगे, मतलब उस तरह से मतलब ना वो पूरी पूरा पूरा स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर से लेकर मतलब उसके गांव की सोशियोलॉजी, गांव का मतलब वो सारा कुछ उस तरह से, लिंग्विस्टिक में भी देखिए जब वो एक जब संस्कृत की बहुत इज्जत थी तो वो संस्कृत पढ़ते थे, जब इंग्लिश की बहुत इज्जत है तो वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब स्विच कर लिया उन्होंने कितने कनिंगली, मतलब वो उन्होंने संस्कृत को छोड़ा, विदेश जाने से पहले जाति चली जाती थी, फिर विदेश में पैसा आ गया तो सबसे ज्यादा विदेश जाने लगे, नाच गान नीच लोगों का काम था, लेकिन 50 और 60 के बाद जब विदेश फिल्मों में पैसा आया, नाचने गाने में पैसा आया, तो उन्होंने नाचने वाले गाने वाली जातियों को सबको बाहर कर दिया फिल्मों से, मतलब एना मॉर्कम की एक पूरी किताब, उनकी पीएचडी थीसिस है, एक फ्रेंच स्कॉलर हैं एना मॉर्कम, वो उन्होंने कोटिसान एंड डांसिंग बॉयज एक बुक भी लिखी है, इलिसिट वर्ल्ड ऑफ इंडियन डांस, तो उसमें उन्होंने पूरी 300 पेज की पूरी थीसिस है इस पर कि किस तरह से जो कास्ट ने फिल्मों में और डांस की सारी दुनिया में किस तरह से श्यामक डावर आते हैं और फिर जो फिल्म जो डांस है वो जो आमतौर पर जो लोअर कास्ट के लोग इस काम को करते थे, देवदासियों की बेटियां और फिर तवायफों की बेटियां फिल्मों में आती थी, ये सारा देखिए ना आप, ये जब पुराना जो फिल्मों में जाने वाले सारे लोग मतलब जो डाउटफुल मतलब पेरेंटेज जिसको बोलते हैं लोग गंदे तरीके से, उनके उन परिवारों के लोग आते थे, मतलब कुछ पारसी लड़कियां आती थी, कुछ ये आपके एंग्लो इंडियन लड़कियां आती थी, अपर कास्ट की लड़कियां नहीं आती थी, और उसके बाद जैसे ही पैसा और स्टेचर आया फटाफट मतलब माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी और उसके साथ अनुष्का शर्मा, मतलब भाई उन्होंने जो मतलब ढक के रखने में भरोसा करते थे उन्होंने कपड़े उतार दिए जैसे ही वो आया, मतलब पैसा और जैसे ही वो हुआ कि
पावर उसके अंदर
भारत महोत्सव और जो संगीत कला अकादमी और इन सब में पैसा आया तो गाने भी लगे और फिल्मों में पैसा आया तो नाचने भी लगे, और उसमें फिर वो संस्कृति भारतीय संस्कृति संस्कृति कुछ नहीं, देखिए माधुरी दीक्षित ने कितने कम कपड़े पहन के नाच लिए मजे से, उनकी जात को कोई मतलब उसमें कोई उनकी जात भी नहीं खराब हुई उसमें, तो मतलब ये बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, इसलिए असल में अपर कास्ट की स्टडी जरूरी है, ये समझना कि
हाँ कि ये कैसे
कंडक्टिंग
देंसेल्स इवन
कर जा रहे
हैं। इवन कल मैं एक चंद्रभान प्रसाद जी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें बता रहे थे कि उनके उनके कहीं एक गांव में गए थे जहां पे पहले ये सोचना ही असंभव था कि कोई दलित महिला, कोई अपर कास्ट की जो महिला है वो दलित महिला से बात भी करे। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो ठाकुरों के साथ शादी हो गई उनकी अपर कास्ट की, और उनके पास इतने पैसे नहीं है ठाकुरों के पास, तो नए कुछ बिजनेस ढूंढ रहे थे, तो बहुत सारे वहाँ पे मेकअप जो का पार्लर है वो खोल लिया उन्होंने। तो वहां पे वो क्या अभी दलितों का मेकअप करने लग गई अपर कास्ट की महिलाएं। तो बोले ये मैंने पहली बार देखा ऐसा सिनेरियो कि अपर कास्ट महिलाएं दलितों का मेकअप कर रही है बड़ी खुशी से, बिकॉज कैपिटल का इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था।
बिल्कुल 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 नहीं, देखिये जो जाति है इस क्वेश्चन में भारत में दो तीन चीजों ने चैलेंज किया है। एक इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है अर्ली, आपको मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो कास्ट को फर्स्ट चैलेंज तो आता है जो रिजर्वेशन है उससे। इसकी वजह से हो क्या रहा है, हुआ क्या कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑफिसेस ये फिर एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं रहे पर कास्ट को, साथ में रहने की मजबूरी हो गई, साथ में बैठने की मजबूरी हो गई। और तो ये एक फर्स्ट चैलेंज आया वहां से कास्ट को, जो जो एक टचेबल अनटचेबल की बाइनरी थी और जो प्योर एंड प्रोफेन की जो बाइनरी थी, प्योर एंड इम्प्योर की बाइनरी,
सेक्रेड और प्रोफेन,
ये बाइनरी कि भाई साथ में तो आपको काम करना पड़ेगा, साथ में आपको बस में ट्रेवल करना पड़ेगा और वो छू जाएगा, इसलिए आप उसके लिए दिन में चार बार नहीं नहा सकते हो, दैट्स गॉन, आपका वो प्रिविलेज गया। इसके बाद का एक और जो बड़ा चैलेंज आता है वो मॉडर्निटी के साथ आता है। आपको नई टेक्नोलॉजी में जाना है, आपको एक कपड़ा मिल में काम करते हैं, उस कपड़ा मिल में धागा आपको अगर मुंह में लगा के उसके किसी दलित ने छुआ है तो उसके बाद आपके अगर शिफ्ट आई है तो आपको करना पड़ेगा, और आपको उस काम को मना नहीं कर सकते अगर नौकरी करनी है और उसमें पैसा है तो आप करेंगे। हालांकि जो वर्किंग क्लास हिस्ट्री है मुंबई की कपड़ा मिलों की, उसमें शुरुआत में दलितों को वो उस विभाग में नहीं जाने दिया जाता था नौकरी जहाँ पर वो करना पड़ता था, मतलब हाथ धागा वगैरह लगाने का काम। इवन जो पहले जो फर्स्ट स्ट्राइक्स हैं उसमें लोग मतलब ब्रिटिशर्स तो देख के दंग रह गए कि स्ट्राइक कर रहे हैं मजदूर, मतलब एकदम मार्क्सिस्ट आइडिया के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टियां उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं और मजदूर एक साथ खड़े नहीं है, सब अलग अलग खड़े थे, अलग अलग जातियों के लोग, तो ये मतलब स्ट्राइक नहीं, तो ये सब तो फिर भी मतलब वहां से चैलेंज आता है। इसके बाद जो मार्केट है इसने बहुत तोड़ा है कास्ट को, बहुत तरीके से तोड़ा है कि एक आदमी अगर बाहर जैसे अब हमारे जो शैम्पू लगाती है एडवर्टीजमेंट में, वही शैम्पू 2 रुपए में लेके कोई दलित भी लगा ले रहा है और खुद को यहाँ वाली वो लड़की फील भी कर रही है। तो ये जो मतलब सेंस आया है कि मतलब हम भी हैं और हम भी वैसे ही हैं, इसने भी कास्ट को बहुत तरीके से जोड़ा है। मतलब आपको जो साथ में रहने की मजबूरी, साथ में जब इंटरेक्ट करने की मजबूरी, तो उसमें फिर दोस्तियां हो रही है, कुछ कुछ छिटपुट ही सही बहुत कम, लेकिन थोड़ी बहुत शादियां भी हो जा रही हैं, आपको बहुत तरह के और इंटरेक्शंस में जा रहे हैं, तो जो घेटोज थे घेटोज टूटे हैं। मतलब जो क्लोज्ड इनक्लोजर्स, मतलब जिस एयरटाइट क्लोज्ड इनक्लोजर्स जो थे वो भी टूटा है। डेमोक्रेसी ने फिर तोड़ा है कि मतलब जो आप कोई मतलब कास्ट सिस्टम या इस तरह का कोई भी सेग्रीगेशन का सिस्टम बगैर दंड के नहीं चल सकता है। तो मतलब जैसे आप मूछ रखने पर पीट देते हैं, साइकिल पे चढ़ना मोटरसाइकिल पे चढ़ने पे पीट देते हैं, ये जो कोएर्सन है इसके बगैर वो चल नहीं सकता है। जैसे संभोग का जो वध कर दिया राम ने, बादशाह उसमें लिख रहे हैं कि मतलब वो कोई बिल्कुल वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं राम ऐसा करते हुए, अगर वो नहीं करते तो वो अधार्मिक कार्य होता, क्योंकि रिलीजन का डिक्टेट यही है उनका वो सेंक्शन कर रहा है कि ये करना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आपका कास्ट सिस्टम चल नहीं सकता, इस तरह कोई भी सेग्रीगेशन का सिस्टम चल नहीं सकता, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप, तो कोएर्सन जो है वो काफी कम हुआ है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, फिर सिविल राइट एक्ट आ गया, फिर SST एक्ट आ गया, फिर आर्टिकल 15(4), 16(4) ये सब आ गया, तो इसकी वजह से कोएर्सन जो है वो काफी कम हुआ है। अब ये कनिंगनेस में है, अब ये मतलब एक तरह से जाति का अत्याचार युग से अब ये षड्यंत्र युग में चला गया है। तो भारत समय षड्यंत्र युग में है, मतलब कॉन्स्पिरेसीज का इपॉक है, कॉन्स्पिरेसी का एरा है। अब जो लोअर कास्ट को दबाने की कोशिशें हैं वो डायरेक्ट और अपफ्रंट नहीं है, अब वो षड्यंत्रों में एक दूसरे को लड़ाकर, उनके कुछ पोस्ट को लेटरल एंट्री से कहीं पे चुरा कर,
कहीं पर नॉट फाउंड सुटेबल के बहाने से, कहीं पर जबरदस्ती या वहां पर आकर EWS लगाकर, मतलब आपको अब जो लोअर कास्ट को जो हेजेमोनिक स्ट्रक्चर के अंदर रखने की कोशिश है, ये इसमें पर्सन का पार्ट कम हुआ है, और जो एंटोनियो ग्राम्सी का आइडिया उसके हिसाब से कंसेंट से ये काम ज्यादा हो रहा है, आपकी आपकी सहमति से आपको दबाया जा रहा है बहुत बार, आपको मतलब वो जो तरीका है वो टूल्स जो है वो चेंज हुए हैं, अब आपको ये नहीं हो सकता है कि वो पढ़ने गया है इक्का दुक्का हो सकता है रोहित उर्मिला की तरह, लेकिन जब इस समय तो मान लीजिए आपको 10 लाख दलित पढ़ रहे होंगे कम से कम, एक एवरेज में अंदाजा लगा रहा हूँ, या 20 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी संख्या मतलब एग्जैक्ट अभी इस समय डाटा नहीं है, तो उसको उनमें से अब 20 लाख को तो मार नहीं सकते ना आप, मतलब आप अब शंबुक की तरह हर किसी का वध तो नहीं करने जाएंगे और हर एकलव्य की तरह हर किसी का अंगूठा काट पाएंगे, तो अब वो मतलब जा क्या करेंगे कि इंटरव्यू में उसको कम नंबर दे देंगे, प्लेसमेंट में आप अच्छी कंपनियां जब आई हैं जिस दिन उस दिन आपने इनको किनारे कर दिया, आपने PhD का इनका टॉपिक खराब कर दिया, देने में टाइम लगा,
प्रमोशन नहीं दिया,
प्रमोशन आगे चल के प्रमोशन नहीं दिया, आपने उसको उस तरह से इनकरेज नहीं किया टीचर ने, आपने थोड़ा सा उसको मतलब उसके एस्पिरेशन को पैदा नहीं होने दिया, आपने जैसे आप ग्रेजुएशन में टॉपर है तो आपने कहा कि तुम टीचर बन जाओ, लेकिन वही अपर कास्ट का एक बच्चा आएगा तो कहेंगे तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से पीजी करो, पीजी करके नेट करो और PhD करके ऑक्सफोर्ड चले जाओ, अब आपने दो एस्पिरेशन अलग अलग तरीके से दे दिया, बारीकियों में हो रहा है काम, ये कोई मतलब आपको मारा नहीं जा रहा है लेकिन दो तरह के एस्पिरेशन पैदा किए जा रहे हैं, तो ये जो सटल तरीके से मतलब एक बारीकियों में अब कास्ट सिस्टम अक्सर काम करता है, वो अर्बन सेटिंग में खास करके जो कास्ट है वो उसकी ब्रुटालिटी उतनी ही है, लेकिन उसका फॉर्म जो है वो बहुत अब इस समय चेंज हो गया है और वो हाँ बहुत ही वो बारीकियों में काम कर रहा है।
तो इसी में मेरा एक आजकल के उससे क्वेश्चन था जो मीडिया का जो लैंडस्केप है वो मैं एक्चुअली पूरा नहीं कर पाया, पिछला जो क्वेश्चन मैं पूछना इसी पे जा रहा था कि पहले के टाइम पे आपने जो बोला कि एक तरह की इस तरह का अनचैलेंज्ड वो था, और जैसे मैं यहाँ पे भी देखता था कि न्यूज़पेपर में भी राजस्थान पत्रिका यहाँ पे खुल के रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी करो, कुछ कोई इस पे डिस्कशन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, बट अभी आपको क्या लगता है कि कोई मीडिया के अंदर कुछ किसी प्रकार की कोई जागरूकता आई है या फिर कोई सेंसिटिविटी इस इशू को लेके आई है प्रेजेंट टाइम में, कंटेम्पररी टाइम में?
देखिए ये क्योंकि मेरे थीसिस का भी विषय है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जब ज्यादा किसी बारे में आप जब पढ़ने लगते हैं तो चीजें फिर थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, दो चीजें हैं कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं चैनल अखबार, ये हिस्टोरिकली हमेशा अपर कास्ट के हाथ पे रहा है, ये बाबा साहब ने भी अपनी जो स्पीच है उनकी बहुत फेमस रानाडे गांधी एंड जिन्ना, उसमें भी उन्होंने कहा है और भी कई जगह कहा है कि मीडिया जो है अपर कास्ट डोमिनेटेड है, और वो लोअर कास्ट के खिलाफ जब लिखता है तो उसमें कास्ट हेट्रेड वर्ड यूज किया उन्होंने कि कास्ट हेट्रेड से वो गाइड होता है। दूसरी उनकी ही थीसिस है कि जो अपर कास्ट है उसके अंदर आप अगर कोई रिफॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जिस रिलीजन को मान रहा है वो रिलीजन ही उनको सेग्रीगेशन और डोमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहा है, तो वो रिलीजियस है क्योंकि, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन तो करेगा ही अगर वो रिलीजियस है, तो उसको इसके लिए अगर वो डिस्क्रिमिनेशन उसको बंद करना है तो उसको अपने रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा और उसके कम से कम जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको डिनाउंस करना पड़ेगा, तो अपर कास्ट डोमिनेशन एक फैक्ट है इसका इंडियन मीडिया का, जो जब से इंडियन प्रेस आया है एक तरह से उसका जो 1920s के आसपास बड़े पैमाने पर आता है और आज तक आपकी इसकी पूरी जर्नी है, इसमें आप बीच में आपको रेडियो आता है, उसके बाद टेलीविजन आता है और जो डिजिटल बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो आते हैं, तो इनमें से सब जगह जो है अपर कास्ट डोमिनेशन है बहुत ज्यादा है। लेटेस्ट इसकी स्टडी 2019 की ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया है,
हाँ,
तो
पढ़ा मैंने
उसके बाद हाँ, तो वो जो स्टडी है तो वो बहुत साफ तौर पर दिखा रही है कि जो स्ट्रक्चर है मीडिया का उसमें उन्होंने डिजिटल से लेकर सब इंक्लूड किया है, वो हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स, ये उनका उनकी स्टडी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स इन इंडियन मीडिया, ये उनका इंडियन न्यूज रूम, ये उनका टाइटल है, तो इसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया, इवन वो भी इसमें वो थोड़ा सा इसको स्कोप और बढ़ा के देखते हैं कि जो कास्ट केसेस पर जो छपता है उसका उसका उन्होंने स्टडी किया है, फिर जो टेलीविजन पर पैनलिस्ट आते हैं उनका कास्ट कंपोजिशन क्या है ये उन्होंने स्टडी किया है, फिर एडिट पेज पर और ओपिनियन पीसेस कौन लिखता है इसका स्टडी किया। तो ये सारे डोमेन्स पर एक जो कॉमन एक जो डाटा एक स्टोरी बताता है वो ये है कि बहुत ज्यादा अपर कास्ट डोमिनेशन है, 80% से ज्यादा है, कई जगह तो 90% तक है, इन सब में, इन मैन पावर, इन कंटेंट, इन ओपिनियन राइटर्स, इन पैनलिस्ट, इन सारे डोमेन्स पर, इन सारे जो वर्टिकल्स में आप देखेंगे तो अपर कास्ट डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, और ये आज भी है, मतलब 2021 में भी ये बदला नहीं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि 2006 में जब इसकी फर्स्ट बार स्टडी आई, बल्कि इससे और पहले 1996-97 में जब फर्स्ट बार ये कास्ट की स्टडी बीएन पुनियाल ने की थी और वाशिंगटन पोस्ट के जो साउथ एशिया ब्यूरो चीफ थे उस समय केनेथ जे कूपर, वो मुझे हार्वर्ड में मिले थे, तो उन्होंने एक स्टडी की कराई, तो मैंने कुछ जानने की कोशिश की, तो उस समय से इसके बाद दो तरह के प्रोसेस चल सकते थे कि एक मीडिया एक इंट्रोस्पेक्शन से गुजरता कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम डाइवर्सिटी हमारे अंदर नहीं है और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो अमेरिका में हुआ था जब जैसे 1967 में यूएस में जब रेशियल राइट्स हुए थे तो उसके बाद वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट ने लिंडन बी जॉनसन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक केरनर कमीशन बनाया था, मिस्टर केरनर जो थे वो इलिनॉइस के मेरे ख्याल से सेनेटर थे, तो उनके नेतृत्व में, और उसमें उन्होंने बताया कि जो अमेरिका में रेशियल राइट्स है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मीडिया जो है वो वाइट के पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट करता है, तो ब्लैक्स की वॉइस हमें पता भी नहीं चलती कि वहाँ चल क्या रहा है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट गेटोज बिकॉज जो वाइट जर्नलिस्ट है वो गेटो में जाता ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप जरा इसको देखिए समझने की कोशिश की, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था, बहुत बड़ा भारत बंद था, पिछले 20 साल में उस लेवल का भारत बंद नहीं हुआ था। अब उसमें 13 लोग तो फायरिंग वगैरह में मारे गए थे और देश में कम से कम 500 शहरों में बिल्कुल बंद था, रेल से लेकर रोड वगैरह बहुत बंद था, और इसकी वजह से सरकार को SC/ST एक्ट को फिर से वापस अपने फॉर्म में लाना पड़ा, पार्लियामेंट बैठी, फिर फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट बदला, सब बहुत बड़ा मूवमेंट था। अभी 2 अप्रैल का भारत बंद जो था, तो 2 अप्रैल को 11 बजे के आसपास 500 के शहरों में 50-60 लाख लोग निकल के सड़कों पे आ गए। अभी इतनी बड़ी चीज हो रही थी, क्या मीडिया को इसकी थोड़ी सी भनक थी? अब मैंने इस पर स्टडी की है कि 2 तारीख को सुबह का अखबार अगर आप देखेंगे, दिल्ली और आसपास के सारे अखबार मैंने स्टडी की, किसी में खबर ही नहीं है कि आज ये होने वाला है, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि भारत बंद होने वाला है, किसी चैनल ने उससे पहले कोई डिस्कशन नहीं किया, किसी को पता ही नहीं था कि अगले दिन इस देश में इतनी बड़ी चीज होने वाली है, ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब आप पता ही नहीं चला कि मतलब क्या सपना आया लोगों का, अचानक से 11-12 बजे निकल के चले आए और कुछ मतलब पागल हो गए लोग, क्या हुआ था? इससे पहले बाकायदा मीटिंगें हुई होंगी, पर्चे बने होंगे, उस दिन जो बड़े बड़े बैनर्स निकले थे वो बैनर्स बन रहे होंगे, लोगों को आपस में तय कर रहे होंगे कि इसको कहाँ जाना है, आप क्यों नहीं पता चला? इंडिया की इतनी बड़ी कम्युनिटी, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन SC/ST की है, हर चौथा आदमी SC/ST का है इस देश में, तीन आदमी अगर बाकी है तो चौथा आदमी SC/ST का है, और इसमें OBC के लोग भी शामिल होते, इतनी बड़ी हलचल आपके देश में हो रही थी, मीडिया क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं था कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, आपका आदमी वहां पर है ही नहीं, आपका आदमी वहां जाता ही नहीं है, आपको मतलब डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, उनका क्या कंसर्न है? तो आप इतना बड़ा डिस्कनेक्ट के साथ ये देश जो है इसमें मीडिया काम कर रहा है, तो ये और इनका इनको भरोसा भी नहीं है। मैं तो बहुत लंबे समय से जानता हूँ कि वामसे पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो संगठन है वो अपने प्रोग्राम्स के लिए मीडिया को बुलाते ही नहीं है। इवन बहन जी 3 या 4 साल में एक दो इंटरव्यू देती है, देती नहीं देती, नहीं देती, उनको मालूम है खिलाफ भी लिखना है, तो खिलाफ ही लिखेंगे तो काहे को देना है,
कांतिराम जी ने तो चाटा भी मार दिया था।
हाँ वो भी था, नहीं मुलायम सिंह 3-4 साल उनको मालूम है खिलाफ ही लिखेगा, क्या करना है? तो इतना डिस्कनेक्ट ठीक नहीं है, मतलब ना ये मतलब इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो मीडिया आई है एक्चुअली इसने गैप क्रिएट कर दिया, ये गैप बहुत लंबे समय तक रहा, और इसकी इसकी वजह से आप देखेंगे कि 2016-17 के आसपास से एक नया फिनोमेना आता है बहुजन मीडिया का।
छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे पेपर्स, हालांकि मैगजीन्स वगैरह बहुत पहले से निकल रही थी दलित मैगजीन है, तो इन्होंने उस गैप को भरने की कोशिश की और इसमें कई अब ऐसे हैं जिनके के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं एंड मतलब सेल्फ सस्टेनिंग है और उतना रेवेन्यू भी वो कर ले रहे हैं कि 5 आदमी 7 आदमी मिलकर काम करें। इसमें आपको बहुत सारे नाम मैं क्या लूं, लेकिन आप वो देख सकते हैं दलित बस्तर, MNTV, बहुजन टीवी, शुद्रा चैनल, मतलब ये मतलब 5 लाख 10 लाख 20 लाख मुख नायक, कई सारे और हैं मतलब जैसे आवाज इंडिया टीवी, विलप बाबा साहब, मतलब इतने तरह के मतलब कम से कम एक एक हैं जिनके की मतलब करोड़ों करोड़ों व्यूज हो चुके हैं मतलब। तो ये इन्होंने गैप क्रिएट किया। लेकिन डिजिटल स्पेस में आने तक मुझे एक्चुअली मैं क्लासरूम में कई बार पढ़ाता था एक समय कि डिजिटल स्पेस जो है वो पूरे मीडिया को डेमोक्रेटाइज कर देगा। तो ये भ्रम मेरा टूटा धीरे धीरे। हुआ क्या कि इस स्पेस में भी जो लेगेसी मीडिया में पावरफुल लोग थे ना
वो सब
वही यहाँ भी पावरफुल हो गए। हाँ, मेरा एक रिसर्च पेपर भी है JPW में छपा
है, IPW में पढ़ा मैंने देखा।
हाँ, वो कंटिन्यूटी में हो गया। वही जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो लेगेसी मीडिया में सबसे बड़ा था, वही आज की तारीख में डिजिटल मीडिया का भी सबसे बड़ा है। नंबर टू पे अगर इंडिया टुडे ग्रुप है तो डिजिटल मीडिया में भी वो नंबर टू ग्रुप है। NDTV वहां भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, और इन सब में फिर अपरकार डोमिनेशन है। तो अपरकार डोमिनेशन एक तरह से रिप्रोड्यूस हो गया डिजिटल मीडिया में, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ठीक सही बारीक सही सही, लेकिन एक चैलेंज यहाँ पर है। मतलब एक आप एकदम मतलब एक रंग में रखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा मतलब इंद्रधनुष का आभास जैसा यहाँ पर है मतलब डिजिटल स्पेस में। सो ये और इसमें सोशल मीडिया में तो थोड़ा सा और ज्यादा मतलब चर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर वही है कि एक आदमी एक वोट है, तो एक आदमी एक वोट होने की वजह से, क्योंकि संख्या तो बहुत ज्यादा है बहुजनों की भारत में, तो 1:8, 1:7 पड़ जाता है मतलब अपर कास्ट और उसमें। तो अगर अपर कास्ट मान लीजिए मोटे तौर पर कि सारा का सारा आ चुका है सोशल मीडिया में, या बड़ी संख्या में जो भी जिसकी औकात है सब आ चुके हैं मतलब वहां पर, थोड़ा कम भी आया होगा लेकिन कुल मिलाकर संख्या में काफी हद तक ये मैच कर लेते होंगे। अब खास करके फेसबुक पे तो कर लेते होंगे, तो इसलिए फेसबुक बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं मतलब
जनों
के, और
वो मैं भी काफी फॉलो
करता हूं, बहुत तरह के आपस में बात करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स दुनिया भर के बने हुए हैं। तो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्पेस का एक सेम्बलेंस तो है यहाँ पर, एक एहसास आभास है यहाँ पर।
क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि इनफैक्ट पिछले काफी टाइम से मैंने जस्ट रिसेंट कई सारे इश्यूज होते हैं उनका बैकलैश जो आता है बहुजन या दलितों के द्वारा, वो अब अभी के टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, पहले आप कुछ भी कर सकते थे और कोई बैकलैश नहीं आएगा। अभी जैसे रिसेंटली एक ऋचा चड्ढा की कोई फिल्म आई थी चीफ मिनिस्टर, उसके पोस्टर पे उनको काफी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसका काफी स्ट्रॉन्ग बैकलैश था और ऋचा चड्ढा को भी बोलनी पड़ी, वो उसको उनको देना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो जिनके रिसेंटली जो बैकलैश, और जो वो बैकलैश भी नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा कि असर्शन, या फिर जो काफी टाइम तक नॉर्मली चीजें चलती आ रही थी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, उसको आप एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं लोग, तो वो एक पॉजिटिव थिंग तो है। बट हाँ, अभी बट आपकी बात ये भी सही है कि डोमिनेशन जो है वो तो पूरी तरह से उन्हीं का है, ये ऑनलाइन का भी इकोसिस्टम उनको बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह से फंक्शन करता है, तो उन्होंने इसको भी डीकोड करके।
राजेश देसाई को कितने मतलब 90 लाख के आसपास का उसका फॉलोअर्स है, बाकी मैंने उस पर आपने बोला मजेदार तरीके से देखा कि उसने तो रिट्वीट्स मिलते हैं इतने, उससे तो कई गुना ज्यादा मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन वो इन्फ्लुएंसर तो है ही है तब, और पुराने इन्फ्लुएंसर सारे यही हैं, और उस समय पता नहीं किस तरह से लाइक।
ये भी बड़ी मजेदार बात है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, राजदीप सरदेसाई तो एक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये कोई भी नई बात नहीं बोलते, निधि राजदान, राजदीप सरदेसाई, बहुत सारे, ये क्लिशे को ही बोलते रहते हैं, एक क्लिशे, कोई नया आर्ग्यूमेंट, कोई नया कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और फिर भी उसका वो इतने मतलब इम्पोर्टेंट फिगर है। मैं तो चाहता हूँ कि चलो ब्राह्मण दे रहे हैं तो वही दे दो, कोई नया थॉट तो दो मुझे कि मैं भी सोचूं उस बारे में। बड़ो क्लिशे प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लिशे, उसमें ना रिसर्च है, ना थॉट है, ना कुछ भी है। तो वो
पानी मुझे... जब रसल में ना पानी जब खड़ा रह जाता है ना तो सड़ जाता है।
तो ये सड़ा हुआ पानी है, ये लोग सब ना, ये सब सब राजदीप वगैरह सब सड़े हुए पानी है, मतलब ना इनमें से सिर्फ बदबू आ सकती है। जैसे बदबू आई ना उस दिन, अचानक से एक दिन उनको ख्याल आया कि दो हमारी जात का मिनिस्टर बन गया, तो उन्होंने लिखा कि जीएसपी प्राइड, बदबू है ना भाई, आपकी बदबू थे आपके दिमाग में, आपको लगा ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक है, ये कोई बुरी बात है, आपने अनाप लिख दिया गौर सारस्वत ब्राह्मण प्राइड। मतलब ये मतलब जस्ट मतलब इमेजिन कीजिए कि जो आदमी ऑक्सफोर्ड वगैरह और क्या क्या बोलता है, वो आदमी पढ़ाई भी होगा हो सकता है, लेकिन वो मतलब गौर सारस्वत ब्राह्मण प्राइड लिख रहा है अपने सोशल मीडिया पर कि मेरी जात के दो ब्राह्मण दो लोग मंत्री बन गए।
ये लोग उनको भी दलितों को बहुत बोलते हैं कि ये कास्टिज्म करते हैं, चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू लेके आप इतना कास्ट के बारे में क्यों बात करते हैं, खुद खुद कर रहे हैं, जब
जिसकी जिसकी प्रॉब्लम है वो बात करेगा ना,
बिल्कुल
आप क्या कर रहे हो, मतलब इनको इनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, उनको उनको उनकी गेज भी नीचे है ना, बहन जी में क्या प्रॉब्लम है, तेजस्वी में क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं तो देख रहा हूँ आप में प्रॉब्लम है, ज्यादा समस्याएं तो आपके पास से आ रही, ये तो मतलब है, लेकिन ये है कि फिर भी डिजिटल मीडिया में उनका वो जो एकदम कंप्लीट डोमिनेशन था लेगेसी मीडिया में, कंप्लीट डोमिनेशन नहीं है उनका, मतलब इसमें इसने थोड़ा सा इनको रेटल्ड है ये थोड़ा, इसकी इसका मैनिफेस्टेशन हमको जो गवर्नमेंट ने नया जो रूल्स वगैरह बनाया है डिजिटल मीडिया का ना, इसका एक सोशल एरेना पर इसका मतलब देखें तो यही है कि उनको उनका जो एक यूनिटरी लीनियर किस्म का डिस्कोर्स चलाने का जो उनका एक अधिकार था वो चैलेंज हो गया, इसलिए वो इसको जो जहां पर ये प्रॉब्लम इनको फेस हुई है इसकी वजह से डिजिटल मीडिया स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए कोई इनको जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर वगैरह अपने आप सबसे सारे मतलब कदम ताल कर रहे हैं, जैसे कह देते हैं बैठने के लिए तो लेट लेटने के तैयार बैठे हुए हैं, तो न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन से इनको कोई थ्रेट नहीं है, जो जो भी थोड़ा बहुत लेकिन है जो नियम वगैरह बन रहे हैं ये सब डिजिटल स्पेस के लिए बन रहे हैं, और इसमें ये इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये इसकी लिनियरिटी जो है मतलब नॉन लिनियर हो गया है, मतलब इसमें ना ये एक अनप्रिडिक्टेबल भी है, कब अचानक से नौकरी मांगने वाले लोग 10-10 लाख ट्वीट करने लगेंगे, इनको इनका मैनेज ही नहीं हो पाता है, तो फार्मर प्रोटेस्ट पर रिहाना और मियां खलीफा आ जाएंगे, इन्होंने सोचा ही नहीं होगा, और ग्रेटा थनबर्ग आ जाएंगे, ये मतलब इनके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्पेस है, जो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या मतलब है, अब लिली सिंह अचानक से ट्वीट कर दे रही है, मतलब क्या ये अब क्या, किसको कंट्रोल करें,
कितना
कैसे करें,
मतलब इन्फॉर्मेशन को,
हाँ ये इसको वो ना ये अब इनके इनको इनके काबू के बाहर है, काबू करना चाह रहे हैं ये।
बट सर इसके अंदर ये जो
हम लोग देखेंगे
ये जो ट्विटर का जो पूरा चीज है, आप बहुत यूज करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, मतलब ये गवर्नमेंट इतना क्यों रेटल्ड हो जाती कि कोई भी ट्वीट आ जाता है कुछ भी किसी का तो सारी की सारी मशीनरी उसके खिलाफ लगा देती है, इतना पैसा खर्च कर रही है आईटी सेल के अंदर, तो ये इतनी क्या इम्पोर्टेंस है एक ट्विटर या सोशल
और अपना एक आईटी सेल और
इतना क्यों लगा रहा है,
फिर उनके उसमें इम्प्लॉय करके रखना, ऑफिस बना के रखना 500-500 लोगों का, मतलब इतना इसको इसमें वो अपने डिस्कोर्स को प्रिवेल कराने के लिए जान लगाए हुए उसमें, लोगों को कभी अरेस्ट करते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी वो प्रशांत कनौजिया को पकड़ लेंगे, तो कभी एक गांव में जाके किसी मुसलमान को उठा लेंगे बच्चे को, मतलब जिसकी जो 100 फॉलोअर ना हो, मतलब किसी कुछ सब सब ये एक्चुअली क्या
मैं एक सेकंड सर, बस मैं एक पॉइंट जोड़ दूं, मैं बस इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि ये जो ट्विटर और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से शायद देश की 2% या 3% अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतने यूज करते होंगे, ज्यादा यूज नहीं करते, तो इसके अंदर इतना क्यों
उतना कम नहीं रहा।
ओके
मेरे ख्याल से 25 करोड़ से ज्यादा तो हो ही गए थे फेसबुक के।
ओके
और ट्विटर के थोड़ा कम होगा, लेकिन देखिए कैसे होता है, मतलब इसका इसकी वजह क्या है, जैसे इसको ना हम लोग मास कम्युनिकेशन स्टडीज में एक हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, टू स्टेप थ्योरी या मल्टी स्टेप थ्योरी। हम लोग किसी चीज को जो रिसीव करते हैं एज लास्ट रेसिपिएंट, वो कई बार मैसेज जहां पर इनकोड होता है और वहां से चलता है वो डायरेक्ट हम लोग उस मैसेज को रिसीव नहीं करते हैं। हम कैसे रिसीव करते हैं, बीच में कोई आदमी रिसीव करता है जो कि ओपिनियन मेकर होता है और वो हमको बताता है कि ये हुआ, और वो आदमी जो है वो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है, गांव में वो टीचर हो सकता है,
वो एक जो सलून है उसको चलाने वाला आदमी जो उसको लगता है कि हर समय टेलीविजन पर देखता है, ये जानकार आदमी कम होता है आमतौर पर। फिर कोई मंदिर का पुजारी हो सकता है, कोई स्टेशन मास्टर हो सकता है, पोस्ट मास्टर हो सकता है, क्लास के स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, या गांव का जो सबसे अमीर आदमी है वो हो सकता है, एक आदमी जो जिसका बच्चा डॉक्टर है वो आदमी हो सकता है। ये प्रभावशाली लोग होते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं और ये जब नीचे बताते हैं तो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो ऐड होके उनके पास पहुंचती है कि आपको मालूम है कि वो मोदी जी जो है ना वो जब खाना खाते हैं तो उनमें हाथी वाली ताकत आ जाती है। अब इस बात को अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी जोड़ के बोलता है, मतलब उसके साथ आता है कि वो जब वो तो जी वो घटना हो गई थी तो 3 दिन बेचारे खाए ही नहीं। अब यह बात जब वो कोई पावरफुल और इन्फ्लुएंसर और बहुत समझदार माना जाने वाला आदमी बोलता है तब इस बात का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। मैं बहुत एक्सट्रीम किस्म का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों में कि वो सरकार अच्छी है, वो आदमी अच्छा है, वो कैंडिडेट अच्छा है, ये असल में हम लोग उस सेकेंड टू स्टेप थ्योरी में पीच के ओपिनियन मेकर्स से लेते हैं। अब ओपिनियन मेकर्स जो भारत में है ना उन तक फेसबुक और ट्विटर पहुंच चुका है, इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ओपिनियन मेकर्स तक पहुंच चुका है और वो इससे ओपिनियन बना बिगाड़ रहा है। फिर वो नीचे बहुत सारे लोगों को बताता है कि ये मुराद मत पता है, ये मालूम है और मैंने तो वहां देखा था, उन्होंने बोला है, तो ये क्रेडिबिलिटीज ऐड होके कास्केडिंग इफेक्ट आता है और वो नीचे तक जा रहा है। तो इसलिए अब जो लोग कह रहे हैं कि हर आदमी नहीं यूज कर रहा है वो एक्चुअली सिचुएशन की गलत रीडिंग कर रहे हैं, मेरा अपना अंदाजा है, कोई एम्पिरिकल डाटा नहीं है, बहुत कठिन है क्योंकि अभी तक मीडिया स्टडीज में मैंने ऐसी कोई थ्योरी नहीं देखी है कि एक मैसेज किसी आदमी पर कितना इम्पैक्ट करता है। मतलब मैं एक आदमी का भाषण देखने के बाद मेरे वोटिंग बिहेवियर में कितना परसेंट का टिल्ट आएगा इसको मेजर करने का कोई तरीका अभी तक बना नहीं है। इवन एडवर्टीजमेंट में भी मैंने एक विज्ञापन देखा सैमसंग का, दूसरा देखा रेडमी का, और मैंने मेरा जो फाइनल परचेजिंग डिसीजन है वो उसमें उन दोनों एड का कितना इम्पैक्ट है इसको अलग से मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसके अलावा 50 चीजें और फैक्टर्स हैं, और हर फैक्टर का कितना वजन है इसको क्वांटिफाई करके कर पाना मुश्किल है। कीमत वजह हो सकती है, ये हो सकता है कि मेरे दोस्त का फोन अच्छा मुझे लगा था, मुझे अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए इसका ये डिजाइन पसंद आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा एड है तो भी मैं नहीं लूंगा। तो एड या कोई कम्युनिकेशन का कितना इम्पैक्ट है इसको साइंटिफिकली मेजर करना अभी तक के किसी टूल से संभव नहीं हो पाया एग्जैक्ट कि मैं मोदी जी का भाषण सुनूंगा और इसकी वजह से मैं बीजेपी को वोट दूंगा या नहीं दूंगा, इस डिसीजन को कितना इम्पैक्ट करेगा, तो कम्युनिकेशन का कितना इम्पैक्ट है ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो देखिए कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका असर होता है, इतना ये डेफिनेटिव तौर पर है कि इसका इस तरह के कम्युनिकेशन का असर होता है। तो इस वजह से इस तरह से किसी कम्युनिकेशन का असर होता है, ये अगर नहीं होता तो IT सेल नहीं होता, मीडिया कंपनियों को हायर नहीं किया जाता, इमेज मेकिंग के इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट को पॉलिटिकल पार्टीज हायर नहीं करती। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये क्योंकि इम्पैक्ट करता है और उसका एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा डिस्कशन इस डिबेट इस समय और सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं तो बहुत क्रिटिकल है और इस पर इसीलिए सबका ध्यान है और इसलिए इसको कंट्रोल करने की उसी प्रोपोर्शन में कोशिशें भी है, जिसका इम्पैक्ट कम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कम है, या वो ऐसे ही कंट्रोल है 50 तरीके से कंट्रोल है भाई, वो चैनल चलाता है साथ में चीनी मिल भी चलाता है और उसके चीनी मिल में 50 घपले हैं, मैंने उनकी नस दबा रखी है वो अपने आप कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत सारे कंट्रोल तो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ सोशल मीडिया में, लेकिन 25 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करूँ फेसबुक पे। अब इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल ये करता हूँ कि भाई जो पड़े कुछ लोग इन्फ्लुएंसर है जो पावरफुल है उसको बीच बीच में उनके हैंडल्स वगैरह को ब्लॉक करने के लिए फेसबुक या ट्विटर को लिखता हूँ और कुछ करवा देता हूँ। इसके अलावा मैं छिटपुट एक दो लोगों पर मुकदमा करवा के उसकी बड़ी बड़ी खबर छपवा देता हूँ कि देखो फलाने अरेस्ट कर दिया ये करने की वजह से, जैसे वो रोमन एम्पायर में होता था ना कि जिसको सजा दी जाती थी उसका बॉडी को सूखने के लिए सजा देने के बाद स्लीप पे टांग के रख दिया जाता था, पूरा शहर देखता था वहीं से गुजर रहा है मेन चौराहे पे, अब बाकी लोगों के अंदर डर पैदा कर देते, एक बच्चे को पकड़ के आपने उसको अंदर कर दिया और उसकी खबर छप गई कि देखो ये पकड़ लिया ताकि पूरे कम्युनिटी में बाकी डर रहे। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी यूज होती है, कर रही है सरकार अपने ढंग से, इसमें वो 25 करोड़ लोगों को तो नहीं वो सजा दिला पाएगी, अब एक एक ट्विटर एक एक इस पर 20 लाख 30 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट पर मेरे ख्याल से 30 से 40 लाख लोगों ने ट्वीट किया था, या उससे भी ज्यादा साइड था। अब 40 लाख लोगों को तो पकड़ने नहीं जाएंगे ना, उनको मुकदमा होगा, लेकिन वही है कि उन्होंने दिशा रवि को पकड़ लिया और कुछ नहीं था वो टूलकिट वगैरह, इतना बड़ा नाटक था उसमें। तो एक मिशिगन यूनिवर्सिटी में बकायदा प्रोफेसर जयजीत पाल और उनकी पूरी 12-14 लोगों की टीम है, उन्होंने स्टडी की कि फार्मर प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा ट्वीट मेरे ट्वीट रिट्वीट हुए थे,
तो उन्होंने पूरा निकाला ट्वीट किया था इसके बारे में।
हाँ, तो वो पूरी स्टडी, पूरा रिसर्च पेपर है। अब वो मुझे तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बेवकूफी भरा टूलकिट का एक नाटक किया उन्होंने, और उसके बहाने चार लोगों को पकड़ लिया, बाकी लोगों को डरा रहे हैं कि भाई देखो तुम अगर ये सब करोगे तो हम पकड़ लेंगे। तो जो जो मछली पानी से बाहर है उस मछली को पकड़ लेंगे, हम लोग जैसे लोग चूंकि पानी के अंदर हैं, भाई समाज के साथ हैं, हमारी वॉइस है, और हम अपना लीगल इलीगल का ही ध्यान रखते हैं, तो आप हमें नहीं पकड़ोगे, लेकिन मतलब आपको अगर बात ही करनी थी तो आप मुझसे पूछ सकते थे, मैं तो उनको 2-3 घंटे का क्लास दे सकता था कि दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, नॉट मतलब डोंट थिंक लाइक मोरन्स, जस्ट थिंक मतलब साइंटिफिक तरीके से सोचो ना कि ये 40 लाख उनको उस हैशटैग को ट्रैक्शन कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, कौन थे उसके पीछे, कौन लोगों मतलब उसके पीछे, जरूरी नहीं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही ना, हो सकता है ना पब्लिक मूड हो गई
बिल्कुल।
तो अब इसको मैं तो उनको मतलब पढ़ाता और मैं बोलता कि भाई ये 3 किताबें पढ़ के आओ, तो बैठना मेरे पास अगर पुलिस वाले कहते तो कि भाई तुम कासे संस्टीन को पढ़ के आओ, उसकी किताब है वो पूरा रिपब्लिक 2.0, उसका तुम एली परिसर को पढ़ के आओ जिसका फिल्टर बबल किताब है, मैं 5 किताब के नाम बताता, 5 ऑथर के नाम बताता कि तुम पढ़ के आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, तुम सर तुम मतलब 2 बच्चे को पकड़ ले रहे हो जाके टूलकिट के नाम पे, उनके कहने से हुआ था क्या, मतलब
एग्जांपल सेट करना चाहते हैं।
हां, वो नए यूथ को डराना चाहते
हैं
कि बस आपने वो समझ, उनको पता भी है, फिर छप गया था ना, छप गया है ना दिलीप मंडल के ट्वीट, सबसे सारी ट्वीट में आपने मुझसे क्यों नहीं बात की, नहीं भी मतलब उनको मालूम है कि मतलब क्या बात करेंगे कि टूलकिट है, कोई टूलकिट नहीं मेरे पास, हमने बस लोगों की पल्स पकड़ी तो हमको समझ में आ गया कि जैसे क्या हो रहा है, वो क्या पब्लिक का मूड क्या है, हमने उस पर हम सवार हो गए, हमको लोगों ने रिट्वीट कर दिया, एक ही दिन में 30-40 हजार रिट्वीट कर दिया लोगों ने मुझे। तो अब वो आप दिशा रवि को पकड़ लोगे, किसी एक अब्दुल को पकड़ लोगे जाके किसी फलान छोटे से गांव में, उसने जी उसका मुख्यमंत्री का अपमान कर दिया। तो ये असल में सोशल मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश तो हो रही है, मतलब होगी और ज्यादा होगी इनको, क्योंकि वो स्पेस इनके कंट्रोल के बाहर है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करें क्या, मतलब इन 25 करोड़ लोगों का क्या करें भाई,
क्योंकि बाकी तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया एक तरह से, प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया सब
को है ना, बाकी वो जो लाइसेंस पे चलते हैं ना चैनल, उनको तो आप उनकी नस्तियों दबा दो ना, करना क्या है, उनको 50 तरह के नपले होंगे, ये इनकम टैक्स फलाना कुछ नहीं, तो आपने उनके ऑफिस के बाहर की खाली जमीन पे गाड़ी ही खड़ी करते हैं, एक दिन आके सारा वो सिर्फ एक दरोगा चाहे ना तो इनको तो ऐसे सीधा कर दे, इसके लिए भारत सरकार को आने की जरूरत नहीं है, सारी गाड़ियां उठा के ले जाए और बोले जो पानी खींच रहे हो ना, मैं इसके नीचे से उसका परमिशन कहाँ है, एनवायरमेंट क्लियरेंस बताओ जरा, कोई भी चैनल कंट्रोल आके सिर कबल खड़ा हो जाएगा आपके सामने, उनको कंट्रोल करना तो बहुत आसान है ना, लेकिन वो जो जो किशन कुमार बैठे हुए हैं एक्स वाई जेड विलेज में और जिनके हाथ में 2500 रुपए का एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन है, उसका 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 क्या करें भाई, उसको तो गुस्सा आया, वो दे रहा है, दे गाली ये ठोके जा रहा है, उसको उसको क्या पकड़ोगे तो बोलो क्या करो, और दो 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 किशन कुमार हो तो पकड़ लोगे, अब आपको पकड़ना है कितने को, 40 लाख को पकड़ लो, पूरे देश में मिला के इसमें टोटल जेल की कैपेसिटी 3-3.5 लाख है, 40 लाख का क्या करोगे, और 40 लाख थोड़ी ना है, मतलब उस तो 40 लाख तो एक एक हैशटैग पे, तो दुनिया भर का मतलब 2-4 करोड़ तो हैशटैग इस पर आ गया था मेरे ख्याल से।
हाँ, मैंने देखा एक्चुअली, आपने जब ट्विटर यूज करना शुरू किया तो ऐसे हैशटैग आने लग गए जो पहले आते नहीं थे, जय भीम और इश्यू से,
वो भी ट्विटर वाले इतने खुश है ना उसकी वजह से, मैंने ट्विटर को इतने फॉलोअर दिए हैं, इतने नए मतलब यूजर दिए हैं, ये लोग थे ही नहीं चुप चुप पार के, ये
और देखिए जैसे क्या सोशल मीडिया का जो बिजनेस है ना उसका वो दो तरीके से चल रहा है और उनके दो पर्पस भी है। एक तो थोड़ा बहुत एड उड का है बिजनेस, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एड का मतलब उसमें। अच्छा। वो क्या कर रहे हैं, हमारे हम जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें हम बहुत सारा डाटा जनरेट करते हैं अपने बारे में, और वो हमारे बिहेवियर का डाटा है कि हमने इन इन विषयों पर हमारी दिलचस्पी है, इस ये कीवर्ड्स मैं यूज करता हूँ, इतने बजे करता हूँ, ऑफिस पहुंच के मोबाइल यूज करता हूँ। उसके साथ अगर आप गूगल का भी डाटा ले लें कि क्या मतलब कहाँ मूव कर रहा हूँ, जीपीएस का डाटा उसके साथ लीजिए तो मेरे मूवमेंट्स पता चल रहे हैं। उसके अलावा जो स्पेंडिंग वगैरह का डाटा जो मतलब तमाम तरह से मैं यूज कर रहा हूँ, जीपीएस से लेके पेटीएम वगैरह से, तो उनको भी इतना ज्यादा मेरे बारे हमारे बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है कि आदमी देखता तो बीएमडब्ल्यू का विज्ञापन फाइनली स्कूटी खरीदता है, और ये जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो उसके फूल का ऑर्डर करता है, और इस तारीख को इस महीने में इस दिन वो जनरली बाहर खाता है, और इस दिन वो जोमेटो का ऑर्डर करता है, और इस तरह का ऑर्डर करता है, और लालच के मारे नॉनवेज का विज्ञापन के रेस्टोरेंट के बारे में जब देखता है और फाइनली खरीदता है दाल। तो मतलब ये हमारे बिहेवियर के एक एक पैटर्न उनको मालूम है बहुत तरीके से। तो उनका पर्पस क्या है कि वो ज्यादा इंगेज रखें हमें, ज्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं तो ज्यादा डाटा इकट्ठा हम उनको देते हैं, और वो उस डाटा को फिर वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज और प्रोडक्ट्स कंपनीज को दे के पैसा कमाते हैं। दिस इज देयर रेवेन्यू मॉडल, तो डाटा बेस्ड एक्चुअली। तो ये जो हमें लगता है कि फेसबुक फ्री है, ट्विटर फ्री है, तो ये अरबों डॉलर का इन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको फ्री में नहीं दिया है, वो हम उसको कुछ देते हैं। मतलब कोई भी दुनिया में कोई चीज जब आप फ्री मिले ना तो आप समझ लीजिए आप प्रोडक्ट हैं। तो हम प्रोडक्ट हैं और हमको वो सेल करता है फिर। तो उनका पर्पस क्या है, ज्यादा एंगेज रखना। तो ये जब हम उसका स्कोप बढ़ाते हैं, हम ये जो इतने बहुजन यहाँ पड़े हुए थे चुपचाप बैठ के मुंह खोल के हा करके राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त को देख रहे थे, तो एंगेज नहीं हो रहे थे ना, दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम,
उनकी कोई बात ही नहीं हो रही
है। हाँ हाँ हाय वो शशि थरूर ने बोल
दिया, वो टूलकिट तो इनका वो टूलकिट कॉन्वर्सेशन चलता है कि किसी ने बोला है और ये वो रिपीट
कर रहा है। देख लिया उसके तो अपना एक दो को लाइक मारा,
एंगेजमेंट कुछ नहीं है।
अब इनका अपना खेल जब शुरू हुआ है भोजनों का, ये असल में अब इनको मजा आने लगा, तो इसके मजा आने लगा तो ये टाइम स्पेंड करने लगे। तो ट्विटर और फेसबुक को काफी मजा आया है असल में, उनको रेवेन्यू के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, भोजनों के आने से। वॉल्यूम तो यहीं पर है, एक गांव में अगर अपर कास्ट का 10 आदमी है, उसने अगर फ्रिज खरीद रखा है ऑलरेडी, तो नया फ्रिज अब थोड़ी खरीदेगा, अब नया फ्रिज तो कोई और ही खरीदेगा ना। या अगर मतलब जो शैम्पू का मार्केट था तो इसका एक्सपेंशन कहाँ होना है, वो तो खरीद ही रहे थे। तो ये जो नया मार्केट एक्सपेंस होना है भारत में, खासकर न्यू जो अब इसके बाद मिडिल क्लास बनना है, वो SC ST और OBC और फार्मिंग कम्युनिटी के अंदर मिडिल क्लास बनना है। ये जब इंगेज होता है डिस्कशन में और इस सब में, तो सोशल मीडिया कंपनीज आर वेरी हैप्पी। इसलिए आप देखेंगे इस बीच में उन्होंने छिटपुट ही सही, लेकिन उनको वेरिफिकेशन ये वो देना वगैरह।
हाँ, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। इसके अंदर आपने जो वेरिफिकेशन वाली बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि आपने जो ये ब्लू टिक का पूरा मुद्दा उठाया था बीच के अंदर, तो काफी सारे एक्टिविस्ट को फिर उन्होंने अचानक ही बिना कोई फॉर्म भरे ही उन्होंने ब्लू टिक दे दिया था। तो इसका ये क्या था, मतलब ये अचानक ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया ट्विटर ने?
नहीं देखिए, इसमें हुआ क्या कि देखिए, एक तो ये स्टेग्नेट कर गए थे, खास करके ट्विटर तो स्टेग्नेट कर गया था, मतलब कोई ग्रोथ इनकी बन नहीं रही थी। तो इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, जाहिर है कोई ऐसे वहां पर भी, क्योंकि भारत में स्ट्रक्चर से जैसे काम करते हैं, तो ट्विटर इंडिया में भी आप समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि कौन लोग काम करते हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आई थी कि हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने जब ये देखा होगा कि ये एक नया स्पेस क्रिएट हो रहा है जिस पर कि बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं और बात हो रही है, तो ये तो उनको समझ में आया होगा कि अब आप इसको उतना ज्यादा एलीट डोमेन बना के रखेंगे तो ये बात बन नहीं रही है, उन्होंने कुछ लोगों को देना तय किया होगा। देखिए असल में क्या है कि ये जो ट्विटर या इवन फेसबुक का जो पूरा मेथड है काम करने का, जो एल्गोरिदम जिस तरह से इन्होंने बनाया है, जिस तरह से किया है, खास करके ट्विटर का, ये बहुत ज्यादा हायरार्किकल है। इसमें जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग मतलब ताली बजाते हैं या मतलब नाचते हैं मतलब उनके लिए।
बिल्कुल,
ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनाए गए हैं, तो इसलिए ब्लूटिक को उन्होंने उस तरह से यूज किया है। ब्लूटिक जो है वो मिलते ही एक तो इन्फ्लुएंसर्स का एक अलग इकोसिस्टम बना देते हैं, आपस में फिर वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और इसके अलावा वो फिर कोई कन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उसको उसमें और अट्रैक्शन एक लेवल पर वो अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए वो इसको पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज नहीं करना चाहते हैं कि जब ये अगर वेरिफिकेशन क्या है कि मैंने अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन अगर दे दिया जो मतलब ऑथेंटिक है तो मतलब टेक्निकली आपको हमें वेरीफाई कर देना चाहिए, यस दिस इज द पर्सन, दिस इज अनुराग, दिस इज दिलीप, यू नो यू हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, सो एंड यू हैव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल दैट, सो यू नो यू हैव
आधार कार्ड,
सो यू नो दिस इज द पर्सन, सो आप इसको कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसको एक ऐसा डोमेन बना रखा है जहां पर कि एक हायरार्किकल सिस्टम है, जहां पर ऊपर कुछ लोग हैं बाकी बहुत सारी नीचे जनता है। इंडिया के सोशल सिस्टम के हिसाब से एकदम परफेक्ट ही है, मतलब एकदम समझिए कि मतलब किसी इंडियन के नहीं उस टाइप को सोचा हुआ है, जो
लाल बत्ती एक तरह से बोल लाल बत्ती वाला सिस्टम है।
हाँ मतलब ये मतलब वी आर मतलब इंडिया के बारे में ही तो लिखा है ना लुई दोमो ने, होमो हायरार्किकस, सोच ही नहीं सकते हैं, हमारी बाइनरी ही चलती है उसी तरह से, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये पवित्र है ये अपवित्र है, ये छू सकते हैं इसको नहीं छू सकते हैं, इसको इतना छू सकते हैं इसको उतना नहीं छू सकते हैं, इससे पानी पी सकते हैं इस आदमी से, इससे पानी नहीं पी सकते हैं, इससे खाना बना हुआ इसका खा लेंगे, इससे खाना बना हुआ नहीं लेंगे, इससे कच्चा सामान लेके खाना बना लेंगे, मतलब वो इतने तरह के ग्रेडेड इनइक्वालिटी का पूरा सिस्टम है। तो उसमें हिसाब से ट्विटर भी उसी तरह से काम कर रहा है। तो इन्होंने अभी भी जो क्योंकि पहले के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके 99% से भी ज्यादा इस समय भी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपर कास्ट की हैं, और उसको लेकर वो बहुत लीनियंट है, बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म सब गाँव 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 कनेक्शन है, पिद्दी सा प्लेटफॉर्म है, नेशनल दस्तक के मुकाबले 100 गुना छोटा होगा। अब नेशनल दस्तक के एडिटर को उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं दिया है, गांव दस्तक में कम से कम 25 लोगों को दे रखा है। ये क्योंकि एक आदमी ही तो है जो वहां पर बैठा हुआ जो इस फैसले करता है कि इसको देना है इसको नहीं देना है, और वो आदमी अपने सोशल लोकेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुका है, मैं कैसे मान लूं, मतलब वो लिबरेट तो सारा मतलब सॉरी गाली दे रहा हूँ, मतलब सिएटल जाके और कैलिफोर्निया जाके जब लिबरेट नहीं हो पा रहा है वो कास्ट के हायरार्की से, तो ट्विटर इंडिया में बैठ के या गुड़गांव और बेंगलोर और हैदराबाद और बॉम्बे में बैठ के ये मतलब लिबरेट कैसे हो जाएगा। तो ये इसके दिमाग का नोशन है ना कि कौन इंटेलेक्चुअल, कौन इन्फ्लुएंसर,
कौन इंपॉर्टेंट, कौन नॉन इंपॉर्टेंट,
कौन इंपॉर्टेंट, ये तो उसकी बचपन की ट्रेनिंग है कि वो मतलब भारत में तो का ये सब बचपन से सीख जाते हैं ना, मतलब मैं एक उदाहरण भी कई बार दे चुका हूँ, मतलब 6 साल का एक बच्चा स्कूल जाके दलित महिला ने खाना बनाया इसलिए मिड डे मील नहीं खाता है, मतलब ये 6 साल की उम्र में उसने सीख लिया है कास्ट हायरार्की, प्योर इंप्योर प्रोफेन, मतलब एवरीथिंग, मतलब उसको 5-6 साल में आ गया है, तो जस्ट इमेजिन। तो जैसे 6 साल की उम्र में जिसको आ जा रहा है वो 35 और 30 साल की उम्र में ट्विटर इंडिया के ऑफिस में बैठ के उसकी वो कास्ट हायरार्की का कितना हिसाब किताब उसके दिमाग में आ चुका होगा। तो ये असल में अभी भी इन्फ्लुएंसर्स वाला जो डोमेन है ये बहुत ज्यादा अपर कास्ट डोमिनेटेड है, आपको उसमें किसी का 200 फॉलोअर है उसको भी दे रखा है, दो पैसे के औकात नहीं है, ऐसे लोग दुनिया भर के हैं जिनको कि उन्होंने वेरीफाई कर रखा है। और यहाँ पर आपको ये अपने पारंजीत मतलब काला और कवाली क्या क्या फिल्में बना ली, उस आदमी ने दक्षिण भारत का सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, उसके मतलब 60 लाख या कितने अब जिनके 40 लाख जिस वेबसाइट के और यूट्यूब के जिनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं उनके एडिटर्स को नहीं दे रखा है इन्होंने, आपको मतलब अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं ढंग के उनके लोगों को नहीं दे रखा है। अब पिद्दी से एक शुरू होता है तो होते ही सिर्फ उसको नहीं देता, वहां काम करने वाले सबको देते हैं, मतलब और वो क्यों होता है कि मतलब
वहां पर एक कोई अब मिश्रा बैठा है, कोई पांडे बैठा है, उनको जानते हैं सीधे वो उसको, और वो रिश्तेदारी निकल आती है थोड़ी देर बात करते करते, अपनी निकलती नहीं तो दोस्त की रिश्तेदारी निकल आती है, और वहां से एक चिट्ठी जाती है तो मतलब हो जाता है काम। तो ये मतलब इंडियन सोसाइटी जैसे काम करती है, वैसे ही काम करता है। तो इस वजह से इसमें बहुत अभी समस्याएं हैं, और लेकिन वही है कि वो अब आपने बना रखा है इन्फ्लुएंसर, उसकी वजह से भीड़ तो जुट गई है, लेकिन उनके पास एक तो जनता नहीं है बोलने के लिए, कोई नई बात नहीं है, तो मतलब बैठे हुए हैं आप 90 लाख फॉलोअर्स के साथ या 70 लाख फॉलोअर के साथ, और रिट्वीट आते हैं आपके 20 और 25 और 6 और 10, और यहाँ पर एक आदमी है जिसका वेरीफाई नहीं है, उसको रिट्वीट आ रहे हैं 200 और 400 और 1000। तो आपने मतलब नकली किस्म का जो आपने एक इन्फ्लुएंसर्स बना रखा है सिर्फ इसलिए कि वो जमे हुए किसी पोजीशन पे बैठा है, भाई बात ही नहीं बोलने के लिए कुछ उनके पास।
हाँ वही मैंने पहले बोला, कोई बात ही नहीं बोलने के लिए,
मतलब कोई नया आइडिया नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं जिंदगी में, कुछ नहीं। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शाम को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं, रिपीट आते हैं,
मतलब क्या था 30 लाख 40 लाख सारे
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बात बोलेंगे, नहीं ना पढ़ा है ना लिखा। अभी तो मैंने किसी को बोला भी तुमने जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी, तुमको एक लाइन, एक फिलोसफर, एक मतलब थ्योरिस्ट का नाम नहीं मालूम, और तुम मतलब उस टॉपिक पे मार लो सीखे जा रहे हो, और तुम्हारा मतलब वाशिंगटन पोस्ट और गल्फ न्यूज में तुम्हारी एनालिसिस छप रही है जिंदगी में। तो मतलब ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर आदमी मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठा हुआ हो, लेकिन कुछ कुछ भी काम नहीं किया। मतलब यहाँ पर लोग बैठे हुए, यहाँ पर दुनिया भर के मैं देख रहा हूँ एक एक आदमी के पास 5-5 6-6 बुक्स हैं दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में जाके, मतलब बताइए सूरज अंडे को नहीं दिया इन्होंने वेरिफिकेशन।
हाँ वही मैं सोच रहा था, कल ही सोच रहा था मैं कि कोई कहीं भी वेरिफिकेशन
नहीं, कितने और ऐसे कितने लोग हैं, चंद्रभान प्रसाद को नहीं आया,
नहीं आया, नहीं आया।
हाँ मतलब क्या लॉजिक है भाई, क्या तर्क है, मतलब इतने देख रहा हूँ कई मतलब जो दलित मिनिस्टर है उनको नहीं दिया, और उसका 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 उसके डिपार्टमेंट का उसके नीचे के नीचे के नीचे का आदमी को दे रखा है। तो बहुत अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वही है कि जो डाइवर्सिटी कमी असल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जिस तरह से आपको 2 अप्रैल भारत बंद नहीं पता चला, उस वजह से आपको इन समाज के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। ट्विटर के वेरिफिकेशन देने वाली जो पूरी टीम है उसमें अगर एक दलित भी होता, मान लीजिए एक मुसलमान भी होता है, किसी भी होता, तो उसको बेसिक तो पता होता कि भाई इस समाज में इसकी बात सुनी जाती है, ये इन्फ्लुएंसर है, आपको कुछ नहीं पता है आपको। तो आपको आप एक दो खिड़की खुली हुई है, वहां से एक दो चीज चली जाती है, उनको आप दे देते हो, लेकिन आपके पास वो खिड़कियां ही खुली हुई नहीं, आप खुद एक घेटो हैं, घेटो की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको एक मिश्रा जी की चिट्ठी आती है तो आपको लगता है यस दिस इज द पर्सन, और आपको दूसरे किसी की आती है, सांसदों के पास वेरिफिकेशन नहीं था, कुमार दानिश अली पीएसपी के सांसद हैं, उनका अभी 6 महीने पहले वेरिफिकेशन का। तो मतलब कितने सांसद हैं जिनका वेरिफिकेशन आज की तारीख में नहीं, मतलब अच्छे अच्छे मतलब स्कॉलर्स दुनिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज जिनको छाप के हैं नहीं दे रहे हैं,
नहीं देते इवन एक
सिस्टम नहीं ना कोई।
एक पर्टिकुलर मैगजीन थी अभी 2020 जब खत्म हुआ था दिसंबर में, मैं नाम भूल गया कौन सी थी, GQ थी या पता नहीं कौन सी थी, तो उसने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स के लिस्ट बनाई कि ईयर एंडर पे कि 2020 के सबसे अच्छे इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कौन है, तो 5 उसमें नाम थे, पांचों के पांचों अपर कास्ट और एक भी डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं, और वो भी 5 में से कुछ लोग तो ऐसे थे जो मतलब कोई पॉलिटिकल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोला,
बेवकूफ एकदम।
हाँ बिल्कुल बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ, कुछ नहीं, और उसमें भी वो थोड़ा पॉलिटिकल डाल दिया, थोड़ा 5 things to say to girlfriend 5 things to say to boyfriend और वैसे करके वो ऑडियंस थोड़ी जनरेट करके, तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैंने मतलब 2 पॉइंट थे मेरे, एक तो मैं सरप्राइज भी नहीं था कि मुझे पता ही कि ऐसे होता है कि पहला ये था, दूसरा ये था कि मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस भी क्यों दे, हम लोग इन लिस्ट को क्यों इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि मीडिया का जो क्षमता है वो भी तो काफी लिमिटेड है,
यही बना रहे हैं।
हाँ
अरे कैसे रिड्यूस करते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे JNU की अफ्रीकन स्टडीज के चेयरपर्सन थे SN मालाकार, ठीक है, माली कम्युनिटी के थे, ओबीसी के,
वो अफ्रीकन स्टडीज और इंटरनेशनल स्टडीज के बड़े स्कॉलर हैं। टेलीविजन में आज तक उनको इंटरनेशनल स्टडीज या अफ्रीका के किसी टॉपिक पर, जब दक्षिण अफ्रीका के कभी नेल्सन मंडेला आए, कभी यहाँ के लोग गए, कोई वहां पर कोई डिबेट हुई, कोई जिम्बाब्वे में कोई सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो गई, उनको इंटरनेशनल टॉपिक पे आज तक नहीं बुलाया गया। उनको किस टॉपिक बुलाया गया? कास्ट बुलाया। अब आप कैसे रिड्यूस करते हैं किसी आदमी को? ओबीसी का आदमी होगा तो उसको कास्ट पे बुलाएंगे, या दलित होगा तो कास्ट पे बुलाएंगे, उसका टॉपिक पे नहीं बुलाएंगे। प्रोफेसर सुखदेव थोराट यूजीसी के चेयरपर्सन, आईसीएसएसआर के चेयरपर्सन रहे, जेएनयू में के प्रोफेसर रहे इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स पे आज तक जिंदगी में उनको नहीं बुलाएगा, ना बुलाया ना बुलाएगा। बुलाएगा कास्ट पे आप डिस्कशन होगा तो सुखदेव थोराट। मतलब आपको कैसे रिड्यूस किया जा रहा है, देखिए ना, मतलब आप इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हो सकते। यू कांट टॉक ऑन पावर, यू कांट टॉक ऑन इरिगेशन, यू कांट टॉक ऑन फॉरेन अफेयर्स, यू कांट टॉक ऑन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, व्हाटएवर, बट आपको क्या है? अच्छा वो है तो कास्ट पे बुला लेते,
कास्ट पे,
मतलब आप सिर्फ कास्ट पे बोलिए बस,
दलित नेता, दलित इंटेलेक्चुअल हो
जाएगा, और दलित उत्पीड़न हो जाएगा तब।
हाँ
रिड्यूस कर रहे हैं ना आपको,
बिल्कुल,
मतलब आप वो विद्वान है, आप दलित दलित विद्वान है,
इसको मैं बोलता हूँ
तो ये
इंटेलेक्चुअल गेटोजाइजेशन एक तरह का वो है कि आप उनका गेटो बना दिया आपने, कि ये इंटेलेक्चुअल इस गेटो में रहते हैं तो उनको जब काम होगा तो इन्हीं से बुलाएंगे,
बस बस कास्ट बोलेंगे जी, कास्ट बोलेंगे। रिडक्शनिज्म है, मतलब आप रिड्यूस कर रहे हैं वो, मतलब आपको गेटो में घुसा रहे हैं भाई। क्यों आप मतलब जिस टॉपिक का वो एक्सपर्ट है, जिस पर उसने 20 साल काम किया है, जिस पर उसकी थीसिस छपती है, जिस पर उसकी 10 किताबें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, उसको आप उस टॉपिक पे नहीं बुला रहे? उनके स्टूडेंट्स को आप इकोनॉमिक्स बुला लोगे? सुखदेव थोराट के 10वें स्टूडेंट जो हैं वो इकोनॉमिक्स बोलने के लिए आ जाएंगे, सुखदेव थोराट इकोनॉमिक्स पे नहीं बोलेंगे कभी भी, आज तक मुझे मालूम है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। और जैसे ये अपने विवेक कुमार डायस्पोरा पढ़ाते हैं, डायस्पोरा पर आज तक बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, उनको कास्ट एट्रोसिटी पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। मतलब आप कैसे, मतलब उसका पूरी एक्सपर्टीज, उसकी पूरी स्कॉलरशिप को आप कितना मजाक उड़ा रहे हैं, उसको उनका जिसका जो विषय है उस पर आप उसको उस आदमी को नहीं बुलाएंगे। मतलब इलेक्टोरल स्टडीज का जो प्रोफेसर है उसको आप इलेक्टोरल स्टडीज और इलेक्शन के दिन नहीं बुलाएंगे, जिस दिन एट्रोसिटी हो जाएगी उस दिन बुलाएंगे। तो ये असल मीडिया इसी तरह से काम कर रहा है, बहुत सारी मैंने बोला ना, अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे वो, आपको वो कॉन्स्पिरेसीज के जरिए आपको तमाम तरह से रिड्यूस करेंगे, नीचे धकेलेंगे आपको, आपको हेटो के में डाल देंगे आपको। आप चाहे वो चाहेंगे कि आप सिर्फ कास्ट पे बात करें, अब मेरा डोमेन मास कम्युनिकेशन है, मुझे वो कास्ट बोलने के बुलाएंगे ज्यादातर, मुझे मास कम्युनिकेशन, जबकि मेरी मैं सबसे कम उम्र का एडिटर रहा हूँ इसमें, मतलब मीडिया पे किताबें लिखी, आपके में रिसर्च पेपर है, आपको हार्वर्ड और एमआईटी तक पे मैं मीडिया पे बोल के आया हूँ, लेकिन मुझे मीडिया पे नहीं बोलने के लिए बुलाएंगे, मतलब कम्युनिकेशन पे बोलने के लिए नहीं बुलाएंगे मुझे, ये मीडिया लॉज पे बोलने के लिए नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे किस पे? कास्ट पे आ जाओ।
मतलब कॉन्शियसली इसीलिए ये जो सेशन था कम्युनिकेशन पे ही रखा मैंने, इस पे आप,
हाँ नहीं नहीं
मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था,
सोशियोलॉजी मेरा टॉपिक भी है, ठीक है, लेकिन मतलब एक नेचुरली, मतलब मेरे बैकग्राउंड के आदमी को जिस डिस्कशन पर बुलाना चाहिए वो जनरली, मतलब अगर मैं अब तक 200-300 बार अलग अलग टेलीविजन डिस्कशंस में गया हूँ तो मुझे लगता है टोटल 300 होगा, तो मेरा 275 बार तो हो सकता है कि जो कास्ट रिलेटेड टॉपिक्स बुलाया गया हो।
बिल्कुल,
तो आप वही है, ये है प्रॉब्लम। चलिए और कुछ?
ठीक है सर, एक आखिरी आखिरी सवाल बस मेरा, एक लाइट सा सवाल है, वो बस इसी को लेके, सोशल मीडिया को लेके एक सवाल है कि आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं भी बहुत स्पेंड करता हूँ, तो मैंने देखा है कि अब मेरी जो पढ़ने की क्षमता है वो थोड़ी सी, अटेंशन की क्षमता थोड़ी सी कम हो गई है, जो कोई रीडिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूज करते हैं, इतना ज्यादा लिखते हैं, तो आप इस डिस्ट्रैक्शन को फील कर पाते हैं कि आप एक जो रीडिंग किसी को आप आधा पढ़ते हैं और फिर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो इस डिस्ट्रैक्शन के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये आखिरी क्वेश्चन था बेटा।
आप मतलब एकदम आपने एकदम मेरे नब्ज पर हाथ रख दिया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं बिल्कुल, मतलब ये उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए जैसे मैंने 6 महीने के लिए मैंने सोशल मीडिया को छुट्टी उस तरह की नहीं ली थी कि मैंने अकाउंट ही मतलब कर दिया था बंद, कि मतलब मेरे लिए मौका ही ना हो कि मैं उसको देखूं। तो जब भी मुझे कोई अच्छा काम, बड़ा अच्छा नहीं मतलब बड़ा लंबा काम करना होगा, तो मुझे सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, वरना ये एक्चुअली इसकी जो बनावट है ना वही है ना, कि उन्होंने बनाया इस तरह से कि ज्यादा टाइम स्पेंड करें।
बिल्कुल,
तो वो हमसे ज्यादा टाइम स्पेंड कराने लायक वो हम, और थोड़ा सा अगर आपका हल्का सा भी इन्फ्लुएंस है तो आपको ये धोखा होने लगता है कि आपके चलाने से चीजें चल रही हैं, तो उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और जो लोग भी थोड़ा मतलब लंबा एकेडमिक काम करना चाहते हैं उनको इसका बैलेंस अगर नहीं बनाते हैं तो उधर छूटेगा, इधर आपको होने से इसका बहुत मतलब है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं होता तो मतलब इतने बड़े बड़े आईटी सेल और इतना सरकार और इतना नियम कानून और कोर्ट का फैसला नहीं हो रहा होता अगर इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन वही है कि आपको एक बैलेंस, आपको अगर जरूरत है तो बैलेंस बनाइए, नहीं जरूरत है तो ठीक है मौज कीजिए, ठीक है कोई पंगा नहीं है। इसी ये आपका बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा रोजगार भी है, अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो एक समय के बाद आपको पॉलिटिकल पार्टीज, और अगर आप मतलब खुद के स्किल्स को और अपने इन्फ्लुएंस को सेल करना चाहते हैं तो वो भी होने लगा है, मतलब खास करके इंस्टा पे तो काफी हो रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट सेल से लेके सब लोग कर रहे हैं, तो आप अगर अपने अच्छा अपना ऑडियंस बनाया है और आपका ऑडियंस आपके इस तरह से अपने इन्फ्लुएंस को यूज करने से अगर वो नाराज नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वही एक उतना आसान नहीं होता है। अब मैं अगर अभी बीजेपी से पैसा लेकर मोदी जिंदाबाद लिखना शुरू करूं तो मेरे जो मैंने मजमा जुटाया है बंदर का खेल दिखाने के लिए, और मैं उसको बोलूंगा कि अब मैं यहाँ पर दवाई बेचूंगा तो भाग जाएगी ना जनता फिर। आपने आपने जो जुटाया है आपको, अगर आपने नाच देखने के लिए आपको नाचना पड़ेगा, रोज नाचो, नाचने की जगह आप बोलोगे कि अब नाचूंगा नहीं, अब मैं गाना गाऊंगा, तो आधी जनता चली जाएगी नाच देखने। आपको अभी आपने जुटाया है क्या, एंटी कास्ट डेमोक्रेट्स लिबरल्स सबको जुटा के आप
सबको, मतलब जो सबको क्वेश्चन करे किसी को ना छोड़े, और उसमें एक एज है,
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके बाद आप बोलोगे हाँ, तो आपने ये जुटाया है और अब आप कहोगे कि अब मैं कम्युनल गाना गाऊंगा तो पब्लिक भाग जाएगी, बोल भाड़ में जाओ तुम्हारी जैसे अपना खेल देखने कहीं और जाए चले जाए।
सही बात,
तो वही है कि आप इन्फ्लुएंस भी आप हर तरह से उसको आप सेल करने नहीं सकते हैं, मतलब उसके लिमिटेशंस भी होंगे, मतलब आप बेईमान होना भी इतना आसान नहीं। अभी मैं अचानक से चाहूं कि इवन कांग्रेस की तारीफ करने लगूं तो जनता दौड़ा लेगी मुझे, अरे ऐसे कैसे, आप एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस आपका स्टैंड था, अचानक से आप ऐसे कैसे, मतलब आपने मतलब सांप नेवला का खेल देखने को बुलाया था और नेवला सांप को मार ही नहीं रहा है तो मजा ही नहीं आ रहा है, दूसरा कोई और ये खेल दिखा रहा है वहां चला जाएगा। तो वही है,
ठीक है प्रोफेसर मंडल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया और आप पॉडकास्ट में आए, इसमें ऑडियंस के
बहुत मजा आया,
ऑडियंस के क्वेश्चन थे वो मैं अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी फ्यूचर में अपन कभी पॉडकास्ट करने का आपके साथ मौका मिले तो मैं तब आपसे ये सवाल पूछूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, थैंक यू, गुड नाइट,
थैंक यू,
गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये था आज का पॉडकास्ट, अंत में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी पेट्रियन की आईडी है patreon.com/anurag-verma, और इस पॉडकास्ट से जुड़ी कोई भी सुझाव कोई भी टिप्पणी आप अगर देना चाहें तो आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट।